सबक देखिए भैया आगे, व इन तज़व्वजहा वलम युसम्मि लहा महरन थुम्मा तराज़या अला तस्मियतिही फहिया लहा इन दखल बिहा औ मात अनहा व इन तल्लकहा क़ब्ल अद्दुखूलि बिहा फलहल मुतअ। وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأنه مفروض فيتنصف بالنص। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर कोई शख्स किसी को वकील बनाए किसी अकद वगैरह के लिए, तो अगर वो वकील मुअक्किल के कहने के मुताबिक अमल करेगा तो वकील का अकद मुअक्किल पर लाजिम हो जाएगा, और अगर वकील ने मुअक्किल की मुखालफत कर दी तो फिर वो वकील जो है फजूली के दर्जे में हो गया, और फजूली के अकद के अंदर तो साहिब इजाजत को इख्तियार होता है, चाहे इजाजत दे चाहे इजाजत न दे। तो एक शख्स ने दूसरे शख्स को वकील बनाया कि मेरा किसी जगह निकाह करवा दो, उस वकील ने उसका दो जगह निकाह करवा दिया। मैंने बताया कि यहां दो सूरतें बन सकती हैं, एक सूरत यह कि दोनों निकाह अलग अलग आकद किए, भाई दोनों निकाह में अलग अलग आकद किए, तो फिर पहला आकद तो नाफिज हो जाएगा, जबकि दूसरा आकद वकील ने अपनी तरफ से किया है तो उसके अंदर वो फजूली है। अब वो मुवक्किल इजाजत देगा तो दूसरा आकद नाफिज होगा, और अगर वो रद्द कर देगा तो बातिल हो जाएगा। ये तो पहली सूरत जो मैंने जिक्र की थी, जबकि किताब के अंदर दूसरी सूरत जिक्र है कि वकील ने एक ही आकद में दो औरतों से उसका निकाह करवा दिया कि मसलन इस जैद का मैं फुलानी और फुलानी औरत से निकाह करता हूं, एक ही इजाब किया, और दूसरी तरफ से वो लड़की वाले दोनों ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, तो एक ही आकद में दो निकाह करवा दिए। तो अब इस सूरत में याद रखो ये वकील ने मुअक्किल की मुखालफत की है, लिहाजा ये दोनों आकद भी जैद पर, मसलन जैद ने वकील बनाया था तो ये दोनों आकद भी जैद पर लाजिम नहीं, और दोनों में से किसी एक मुतायन को भी जैद पर लाजिम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तरजीह की वजह नहीं है, और इन दोनों औरतों में से किसी एक गैर मुआयन को भी जैद की बीवी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका तो कोई फायदा नहीं है। और फिर दूसरा मसला जिक्र किया था कि अमीर ने, हाकिम ने किसी शख्स को हुक्म दिया कि किसी औरत से मेरा निकाह करवा दो, अब उस वकील ने गैर कुफ के अंदर उसका निकाह करवा दिया, तो इमाम साहेब फरमाते हैं कि ये निकाह नाफिस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अमीर ने इमराअ का लफ्ज जिक्र किया था, और इमराअ का लफ्ज मुतलक है, ये उस औरत पर भी बोला जाता है जो कुफ हो, और उस औरत पर भी बोला जाता है जो गैर कुफ हो, तो जहां भी निकाह करवा देगा चाहे कुफ में चाहे गैर कुफ में वो निकाह नाफिस हो जाएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, यहां पर कुफ ही में निकाह करवाना पड़ेगा, वजह यह कि ये मुतलक है, और मुतलक जो है उसको मुतारफ पर महमूल किया जाता है, यानी जो लोगों में राइज और शाय होता है, और लोगों के अंदर राइज और शाय ये है कि वो कुफ के अंदर निकाह करते हैं, गैर कुफ में निकाह नहीं करते। तो यहां मुतलक इमरा आया, लेकिन इसको मुतारफ पर महमूल किया जाएगा, और मुतारफ तो कुफ में निकाह है, लिहाजा इस इमरा से मुराद वो इमरा है जो उसका कुफ हो, तो गैर कुफ में करवाया तो इसने वकील ने मुखालफत कर दी, लिहाजा नाफिज ही नहीं होगा ये निकाह। फिर साहिब हिदाय ने इमाम साहिब की तरफ से जवाब दिया कि उर्फ तो मुश्तरक है, यानी लोग कुफ में भी निकाह करते हैं और गैर कुफ में, लिहाजा आपका यह कहना कि मुतारफ यह है कुफ में करते हैं यह हमें कबूल नहीं, और अगर आपकी बात कबूल भी कर ली जाए कि ये मुतारफ यह है कुफ में निकाह किया जाता है, तो भी ये तो उर्फ अमली है। भाई मैंने आपको बतलाया कि ये तख्सीस की बात चल रही है, और तख्सीस के एतबार से उर्फ दो किस्म पर है, एक उर्फ अमली है और एक उर्फ लफ्जी है। भाई उर्फ लफ्जी ये है कि एक लफ्ज उसका माना तो आम है, लेकिन आम लोगों की आदत और तरीका यह है कि आम लोग उसको बाज अफराद के साथ ही उन्होंने उसको खास कर दिया है। मैंने बताया था उर्फ का माना है आम लोगों की आदत और तरीका, तो उर्फ लफ्जी यह है कि एक लफ्ज का माना तो आम है, बहुत से अफराद पर बोला जाता है, लेकिन आम लोगों ने उसको बाज़ अफराद के साथ खास कर दिया, जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, जैसे दाबतुन, दाबतुन जमीन पर चलने वाले हर जानदार को कहते हैं, लेकिन आम लोगों ने इसको उन जानवरों के साथ खास कर दिया जो सवारी के काम आते हैं या जिन पर बोझ लादा जाता है, जैसे गधा है, खच्चर है और घोड़ा। तो अब दाबा का लफ्ज इन पर बोला जाता है। अगरचे ये आम था तो देखो दाबा का माना क्या था, जमीन पर चलने वाला हर जानदार, तो तमाम जानदार इसके अफराद थे, लेकिन उर्फ में अब ये इसके बाज अफराद के साथ ये लफ्ज खास हो गया। यह दूसरी मिसाल जैसे मैंने जिक्र की थी कि माल का लफ्ज है। माल देखो हर वो चीज जिसकी कोई मालियत हो, जिसको माल और दौलत समझा जाता हो, जैसे दिरहम हैं, दीनार हैं, सामान तिजारत वगैरह, ये सब माल के अंदर दाखिल हैं। लेकिन जमाने जाहिलियत में माल का लफ्ज अरबों ने खास कर दिया था, ऊंटों पर बोला करते थे क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दौलत ऊंट थे भाई, तो वो ऊंटों पर माल का लफ्ज बोला करते थे। तो देखो ये दोनों मिसालें हैं उर्फे लफ्जी की, कि लफ्ज तो आम था, दाबा आम था, लेकिन उसको खास कर दिया उन जानवरों में से बाज के साथ, और माल का लफ्ज तो आम था लेकिन इसको खास कर दिया बाज अफराद के साथ जो माल के बाज अफराद हैं। और एक होता है उर्फे आमली, उर्फे आमली ये है कि आम लोगों की आदत यह है कि किसी चीज में तख्सीस कर दें, वहां लफ्ज वगैरह नहीं होता, बस लोगों का अमल होता है। जैसे देखो नए कपड़े, नए कपड़े हर मौका पर पहने जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों की आदत क्या है कि उन्होंने नए कपड़ों की तख्सीस कर दी है ईद के साथ, कि ईद के मौका पर नए कपड़े पहनते हैं। आजकल तो अल्लाह की बे इंतहा नियामतें हैं कि सारा साल ही लोग नए कपड़े पहनते रहते हैं, लेकिन कदीम जमाने में तो कपड़े बड़ी मुश्किल से मिलते थे क्योंकि कपड़े हाथ से बुने जाते थे, तो लोग अमूमन सिर्फ ईद ही के मौके पर नए कपड़े पहनते थे भाई। तो देखो ये उर्फ आमली है, लोगों ने नए कपड़े पहनने की तख्सीस कर दी है ईद के साथ, तो ये उर्फ आमली है भाई। तो जवाब दे रहे थे साहिब हिदाया इमाम साहेब की तरफ से, बात चल रही थी इमरा के लफ्ज की, अमीर ने क्या कहा किसी इमरा से मेरा निकाह करवा दो, तो इमरा का लफ्ज मुतलक है, तो इसके लिए उर्फे लफ्जी को दलील के तौर पर पेश करना चाहिए था आपको, और आप दलील में उर्फे आमली पेश कर रहे हैं। कोई उर्फे लफ्जी पेश करते, कोई लफ्ज की मिसाल जिक्र करते कि देखो ये इमरा का लफ्ज है और लोग जो हैं इसको सिर्फ कुफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कुफ में इस्तेमाल नहीं, तो आपको उर्फे लफ्जी की मिसाल पेश करनी चाहिए थी, उर्फे आमली की नहीं। तो इमरा के लफ्ज में उर्फे लफ्जी तो तख्सीस पैदा कर सकता है, उर्फे आमली इसमें तख्सीस पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि लफ्ज और चीज है और अमल और चीज है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बताया कि इमाम मोहम्मद रहमल्ला ने अपनी किताब मबसूत के अंदर किताबुल वकालत में जिक्र फरमाया है कि इस मसले में साहिबैन ने जो औरत के अंदर भी कफाअत का एतबार किया है, यह इस्तेहसान है भाई। कियास तो यह तकाजा करता है कि इमरा का लफ्ज मुतलक है, लिहाजा गैर कुफ में भी यहां निकाह जायज होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन कुफ का एतबार किया गया यहां औरतों में भी। वजह यह कि गैर कुफ में निकाह करने से कोई भी शख्स आजिज नहीं होता, गैर कुफ में तो वो फौरन ही उसको रिश्ता मिल जाएगा। लोग एक दूसरे से जो मदद तलब करते हैं वो कुफ के अंदर निकाह में मदद तलब करते हैं, तो इसने भी जो वकील बनाया है तो इससे कुफ के अंदर निकाह में मदद तलब कर रहा है, लिहाजा कुफ से ही निकाह करवाएगा तो निकाह मुनाकिद होगा, वरना निकाह मुनाकिद नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने बाबुल महर शुरू किया था भाई। मैंने आपको बतलाया था कि निकाह के अंदर महर का होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि निकाह हो और उसके अंदर महर कुछ भी ना हो, तो निकाह के अंदर महर का होना जरूरी है। वजह यह कि कुरान में अल्लाह ताला जो है मुहर्रमात का जिक्र करने के बाद, यानी वो औरतें जिनसे निकाह हराम है उनका जिक्र करने के बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व उहिल्ला लकुम मा वरा अदालिकुम अंतबतगु बिअमवालिकुम, और इन मुहर्रमात के अलावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, ان تبتغوا باموالکم کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو. معلوم ہوا مال خرچ کرنا پڑے گا, مہر دینا پڑے گا, ویسے بیوی نہیں ملے گی بھائی, تو مہر کا ہونا ضروری ہے. اب کیا نکاح کے اندر بھی مہر کا ذکر ضروری ہے یا ذکر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا؟ تو یاد رکھو نکاح میں مہر آئے گا تو ضرور, چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں, لیکن اگر ذکر نہ بھی کیا پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اس کی دلیل ذکر کی صاحب ہدایہ نے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ انضمام اور جوڑے والا عقد ہے, تو اس کے لیے بس وہ جوڑا ہونا چاہیے جن کے اندر عقد کیا جا رہا ہے, اس کے مفہوم میں مال ملحوظ نہیں, لہذا مال کا ذکر ضروری نہیں. البتہ اس مہر کو شریعت نے واجب کیا ہے اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے, یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ محل حقیر نہیں ہے کہ بغیر مال کے ہی تمہارے لیے حلال ہو جائے, بلکہ یہ معزز اور محترم محل ہے, تو یہ تم مال خرچ کرو گے پھر ہی تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے, ویسے حلال نہیں. تو اس لیے شریعت نے مہر کو واجب قرار دیا ہے. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور باقاعدہ اس میں شرط ذکر کر دی جاتی ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا, تو بھی مہر آئے گا وہاں اور وہ نکاح بھی منعقد ہو جائے گا بھائی, کیونکہ یہ مہر شریعت کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کے حق کو باطل کر سکے یا ساقط کر سکے. تو نکاح ہو جائے گا, البتہ مہر ضرور آئے گا. جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر کی باقاعدہ صراحتا نفی کر دی تو پھر عقد نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے نزدیک یہ نکاح عقد معاوضہ ہے. خاوند مہر سپرد کرتا ہے تو عورت منافع بزا حوالے کرتی ہے, تو یہ عقد معاوضہ ہے, دونوں طرف سے عوض آتا ہے, تو یہ بیع کی طرح ہوا. اور بیع کے اندر سمن کا ہونا ضروری, اگر سمن نہ ہونے کی شرط لگا دی جائے بیع کے اندر, ایک شخص بیع کرے اور کہے میں سمن نہیں دوں گا, تو اس صورت میں یہ بیع ہی باطل ہے. تو اسی طرح یہاں نکاح کے اندر جب مہر نہ دینے کی شرط لگائی تو یہ نکاح ہی باطل ہے بھائی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ شرط فاسد اس نے لگائی ہے نکاح کے اندر, اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا, بلکہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا, البتہ وہ شرط فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. میں نے بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ تین قسم کی ہو سکتی ہیں. ایک تو ایسی شرط اگر لگائی جائے کہ عقد خود اس کا تقاضا کر رہا ہے, مثلا بیوی نے کہا میں نکاح کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تم مجھے نفقہ دو گے اور مہر دو گے, تو بھائی نکاح تو خود ہی اس کا تقاضا کر رہا ہے, لہذا اس شرط کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر نکاح میں ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے, مثلا خاوند نے کہا میں مہر ہی نہیں دوں گا, اب حالانکہ نکاح تو مہر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا بھائی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم, تو مہر کا ہونا تو ضروری ہے, تو اب یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے, اور اس صورت میں عقد نکاح تو ہو جائے گا, البتہ وہ شرط فاسد ہے اس کا اعتبار نہیں. یا اسی طرح دوسری شرط فاسد, مثلا بیوی کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح تو کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تمام زندگی تم مجھے طلاق نہیں دے سکو گے, تمہیں طلاق کا اختیار نہیں ہوگا, تو یہ بھی شرط فاسد ہے, کیونکہ نکاح کے اندر تو خاوند کو طلاق کا حق ملتا ہے, تو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے, تو شرط فاسد اور عقد منعقد ہو جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے شرط کی کہ ایسی شرط لگائی کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کر رہا اور وہ مقتضی عقد کے خلاف بھی نہیں ہے, مثلا شرط لگائی بیوی نے کہ میں نکاح کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اسی شہر میں رکھو گے, کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کرو گے, تو یاد رکھو اس قسم کی شرط لگائی تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شرط دیانتن خاوند پر لازم ہے, یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کو یہ شرط پوری کرنی چاہیے جب اس نے اس شرط کو قبول کیا ہے. ہاں قضاءً یہ شرط اس پر لازم نہیں, یعنی اس شرط کے ہونے کے باوجود پھر بھی خاوند اس کو کہیں دوسرے شہر منتقل کرنا چاہے تو قضاءً اس کو منع نہیں کیا جا سکتا, قضاءً یہ شرط اس پر لازم نہیں ہے. جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قضاءً بھی اس پر یہ شرط لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि हमारे नजदीक कम से कम महार 10 दिरहम हो सकता है। और मैंने बताया कि दिरहम चांदी का होता था और एक दिरहम जो है 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती का होता है, और 8 रत्तियां हों तो ये एक माशा बनता है, और 12 माशे हों तो ये एक तोला बनता है। तो लिहाजा ये मिकदार जो है 10 दिरहम जो है ये तकरीबन 2.5 तोले चांदी के लगभग बनती है ये मिकदार भाई। तो कम से कम महर तकरीबन 2.5 तोले चांदी हो सकती है, इससे कम नहीं। तो हमारे नजदीक कम से कम महर 10 दिरहम है भाई। एक तो अहादीस में जिक्र आता है कि महर कम से कम 10 दिरहम हो सकता है, और नीज दूसरा इसलिए क्योंकि ये महर शरीयत ने इसलिए वाजिब किया है ताकि उस महल के मुअज्जज होने का इजहार हो सके, लिहाजा कम अज कम इतनी मिकदार होनी चाहिए जिसकी कोई अहमियत और हैसियत भी हो, और 10 दिरहम अच्छी खासी रकम है। कदीम जमाने में मैंने बताया 10 दिरहम अच्छी खासी रकम होती थी भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको तलाक की 4 सूरतें और उनका हुक्म बतलाया। याद रखो, निकाह में या तो महर मुकरर किया जाएगा या मुकरर नहीं किया जाएगा। अगर महर मुकरर किया है तो वही महर देगा, और अगर महर मुकरर नहीं किया तो फिर महरे मिसल आ जाता है। मालूम हुआ निकाह के अंदर या मुकर्ररा महर आएगा या महरे मिसल आएगा। फिर याद रखो, चाहे महर मुकरर किया था या महरे मिसल आया, दोनों सूरतों में अगर खावंद बीवी से सोहबत कर ले या सोहबत से पहले ही खावंद का इंतकाल हो जाए तो दोनों सूरतों में वो जो महर आया था निकाह से वो पक्का हो जाएगा, वो सारा देना पड़ेगा। अगर महर मुकरर किया था और खावंद ने सोहबत कर ली या सोहबत से पहले खावंद का इंतकाल हो गया तो सारा महर खावंद के तरके में से उस बीवी को दिलाया जाएगा, यह बीवी का कर्ज था खावंद के जिम्मे। और अगर महर मुकरर नहीं किया तो महरे मिसल आता है, तो महरे मिसल भी अगर खावंद सोहबत कर लेगा या सोहबत से पहले इंतकाल हो जाएगा खावंद का तो यह महरे मिसल पक्का हो जाएगा, अब यह सारा देना पड़ेगा। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि निकाह की वजह से जो भी महर आए, चाहे मुकर्ररा महर हो या महरे मिसल हो, वो सोहबत की सूरत में भी पक्का हो जाता है, सारा देना पड़ेगा, और सोहबत से पहले खावंद का इंतकाल हो जाए फिर भी सारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोहबत से पहले खावंद ने तलाक दे दी तो फिर इस सूरत में याद रखो, अगर महर मुकर्रर किया था तो फिर निस्फ महर देना पड़ेगा, और अगर महर मुकर्रर नहीं किया था, महरे मिसल आया था और सोहबत से पहले तलाक दे रहा है तो याद रखो इस सूरत में मुतआ देना पड़ेगा भाई, यानी औरत को कुछ तोहफा देना पड़ेगा। और उस तोहफे का अंदाजा हजरत आयशा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस तोहफे का अंदाजा 3 कपड़ों के साथ लगाया है कि 3 कपड़े देने चाहिए उस औरत को जिसको खामद ने सोहबत से पहले तलाक दी है और उसका महर मुकरर नहीं था। 3 कपड़े, यानी जैसे अरब का लिबास होता था, एक लंबी कमीज और एक दुपट्टा और एक बड़ी चादर भाई, जबकि हमारे यहां तो शलवार कमीज और दुपट्टा और उसके साथ एक बड़ी चादर, यानी 4 कपड़े हमारे नजदीक देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर महर मुकरर किया था और सोहबत से पहले तलाक दे रहा है तो निस्फ देना पड़ेगा उस मुकर्ररा महर का। और दलील इसकी बतलाई थी साहिब हिदाया ने कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व इन तलक तुमूहुन्ना मिन कबली अंतमस्सुहुन्ना, अगर तुम इन औरतों को तलाक दो इनको छूने से पहले, यानी इनसे सोहबत करने से पहले, वकद फरज तुम लहुन्ना फरीजतन, इस हाल में कि तुमने उनके लिए कोई महर मुकर्रर किया हुआ था, महर मुकर्रर किया हुआ था और सोहबत से पहले तुम तलाक दो तो फनिसफ मा फरज तुम, तो वो जो तुमने मुकरर किया उसका निसफ है भाई, यानी उसका निसफ देना पड़ेगा उस औरत को। और अगर महर मुकरर नहीं किया तो उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुम निसाअ, कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है अगर तुम तलाक दो अपनी उन बीवियों को, मालम तमस्सुहुन्न औ तफ्रिजुलहुन्न फरीजतन, जिनके साथ तुमने सोहबत नहीं की या जिनके लिए तुमने महर मुकरर नहीं किया तो उनको तलाक दे सकते हो। वह मत त्यूहुन्ना, और इनको कोई तोहफा दे दो, इनको कोई नफा दे दो। तो महर मुकरर न किया हो तो निकाह से महरे मिसल आता है, और यही महरे मिसल सोहबत से पक्का हो जाता है, या इसी तरह सोहबत से पहले खामन का इंतकाल हो जाए तो यह महरे मिसल पक्का हो जाता है। लेकिन अगर महर मुकरर नहीं किया और सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर मुतआ देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यह अब आपने हमेशा याद रखना है, बार बार इनका जिक्र आएगा कि महर मुकरर हो तो सोहबत से या खावन के इंतकाल से वो महर पक्का हो जाता है, वो सारा देना पड़ेगा। और अगर महर मुकरर नहीं किया तो महर मिसल आता है, और खावन सोहबत कर ले या सोहबत से पहले खावन का इंतकाल हो जाए तो ये महर मिसल पक्का हो जाता है, ये देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोहबत से पहले खावन तलाक दे तो फिर दो सूरतें हैं, या तो महर मुकरर किया होगा पहले या महर मुकरर नहीं किया। अगर महर मुकरर किया है तो उसी का निसफ देना पड़ेगा, और अगर महर मुकरर नहीं किया तो मुतहा देना पड़ेगा। ये चार सूरतें आपने हर वक्त जहन में रखनी है। आगे मसाइल आएंगे, ये आपके जहन में सूरतें होंगी तो मसाइल आप समझते चले जाएंगे। और फिर इसी तरह कल के सबक में साहिब हिदाया ने एक और मसला भी जिक्र फरमाया था कि हमारे नजदीक कम से कम महर तो 10 दिरहम है। अगर किसी शख्स ने 10 दिरहम से भी कम महर मुकरर किया निकाह के अंदर, मसलन 5 दिरहम मुकरर कर दिए, तो इस सूरत में हमारे तीनों अइमा के नजदीक कम से कम महर 10 दिरहम हो सकता है, उससे कम नहीं। लिहाजा इसी 5 दिरहम को बढ़ाकर 10 दिरहम पूरा कर दिया जाएगा, खावन को 10 दिरहम देने पड़ेंगे। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 5 दिरहम में महर बनने की सलाहियत ही नहीं, और महर के अंदर जब ऐसी चीज जिक्र की जाए जिसमें महर बनने की सलाहियत ही ना हो तो फिर वहां पर वो महरे मिसल आ जाया करता है। जैसे शराब और खिंजीर में महर बनने की सलाहियत ही नहीं, अगर कोई निकाह के अंदर शराब या खिंजीर को जिक्र कर देगा तो वहां बिल इत्तेफाक महरे मिसल आता है। मालूम हुआ जो चीज महर बनने की सलाहियत नहीं रखती उसकी जगह महर मिसल आ जाता है। तो यहां पर भी 5 दिरहम मुकरर किए और ये तो महर बनने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा यूं समझो गोया महर जिक्र ही नहीं किया, और जब महर जिक्र ही नहीं किया तो महर मिसल आता है, तो यहां भी महर मिसल आ जाएगा। जबकि हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि नहीं, यहां पर एक हक है औरत का और एक हक है शरीयत का। याद रखो ये जो महर है ये इब्तिदाअन हक शरा भी है और हकुल मरआ भी है, यानी जब निकाह कर रहे हो तो इब्तिदा में ये जो महर मुकरर कर रहे हो ये शरीयत का भी हक है, औरत का भी हक है। शरीयत का हक है लिहाजा जरूर महर होना चाहिए और नीस 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, और औरत का भी हक है लिहाजा वो इससे जायद जितना भी मुकरर करना चाहे उसकी मर्जी है। लेकिन बकाअन जो है ये औरत का हक बन जाता है, यानी जब निकाह हो गया अब महर खालिस औरत का हक हो गया, वो इस सारे महर को वसूल करती है, और जब ये खालिस उसका हक है तो वो इस महर को माफ भी कर सकती है और जितनी कमी करना चाहे वो कमी भी कर सकती है। तो इब्तिदाअन महर हक शरा भी है और हकुल मरआ भी, और बकाअन ये महर जो है वो हकुल मरआ है सिर्फ। तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि 5 दिरहम महर मुकरर किया है और 5 दिरहम तो महर नहीं हो सकता, तो हम यहां ऐसी सूरत इख्तियार करेंगे कि शरीयत का भी हक अदा हो जाए, औरत का भी हक अदा हो जाए, हम इस 5 महर को बढ़ाकर 10 दिरहम कर देंगे। इस तरह शरीयत का भी हक अदा हो गया कि कम से कम महर 10 दिरहम होना चाहिए, और औरत का भी हक अदा हो गया इसलिए क्योंकि वो औरत जब 5 दिरहम पर राजी थी तो 10 दिरहम पर वो बतरीके औला राजी होगी भाई। और इमाम जुफर रहमतुल्लाह को जवाब देते हैं कि ये जो महर जो 10 दिरहम से कम था, आपने इस तस्मिया को आदम तस्मिया पर कियास किया, यानी गोया महर मुकर्रर ही नहीं किया। हम कहते हैं नहीं, इस तस्मिया को आप आदम तस्मिया पर कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आदम तस्मिया पर भी बाज़ औक़ात औरत राजी हो जाती है लेकिन कम मिकदार पर राजी नहीं होती। मसलन औरत का किसी जगह निकाह हो रहा है और वो भी चाहती है यहां उसका निकाह हो जाए, अब निकाह करवाते हुए महर को जिक्र नहीं किया गया, तो भी औरत इस निकाह पर राजी रहेगी, गोया वो अपने मुअज्जज होने और अपनी सखावत का इजहार कर रही है कि माल मेरे मुकाबले में क्या चीज है, मैं तो ऐसी मुअज्जज और मोहतरम हूं और मेरी तो सखावत का यह हाल है कि मैं अपनी जात को बगैर किसी इवज के ही अपने इस खावंद के सुपुर्द करने को तैयार हूं। तो इसके अंदर तो उसके मुअज्जज होने का और उसके सखी और फयाज होने का इजहार हो रहा है, लिहाजा आदम तस्मिया पर औरत राजी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा महर जिक्र किया जाए कि तुम्हें सिर्फ 5 दिरहम मिलेंगे महर के तौर पर, तो इसमें वो अपनी इहानत और बेइज्जती महसूस करती है, तो इस पर वो कभी राजी नहीं होगी। भाई तो आप तस्मिया को आदम तस्मिया पर कियास नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में फर्क है। आदम तस्मिया पर औरत राजी हो सकती है लेकिन कलील तस्मिया पर औरत राजी नहीं होगी, तो दोनों चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो तस्मिया और आदम तस्मिया एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो आप तस्मिया को आदम तस्मिया पर कियास नहीं कर सकते क्योंकि दो एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं किया जाता। और हमने बतला दिया कि तस्मिया और आदम तस्मिया यहां दोनों एक जैसे नहीं हैं। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इन तज़व्वजहा वलम युसम्मी लहा महरन सुम्म तराज़या अला तस्मियतिही फहिया लहा इन दखल बिहा औ माता अनहा व इन तल्लकहा क़ब्ल दुखूली बिहा फलहल मुतअ।
भाई अब वही सूरतें जिक्र कर रहे हैं, वो चारों सूरतें आपके जहन में होंगी तो अगले मसाइल आप आसानी से समझते चले जाएंगे। सूरत मसाला ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और निकाह में महर मुकरर नहीं किया, बाद में खावंद और बीवी इत्तेफाक कर लेते हैं। मसलन खावंद कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महर दूंगा और औरत भी राजी हो जाती है। ये निकाह के बाद अब 1 लाख रुपए पर राजी हुए हैं मसलन। तो याद रखो, हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि जब एक मिकदार पर दोनों राजी हो गए हैं बाद में, तो यही मिकदार अब खावंद पर वाजिब है, खावंद को देना पड़ेगी। लेकिन अगर इसी सूरत में खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी, निकाह किया था बगैर महर जिक्र किए, बाद में दोनों ने मसलन कुछ मिकदार पर इत्तेफाक कर लिया, लेकिन अब खावंद उसके बाद सोहबत से पहले रुखसती से पहले ही खावंद तलाक दे देता है, तो इस सूरत में अब औरत को क्या मिलेगा? तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि भाई जब महर मुकरर न किया जाए तो उस सूरत में औरत को मुतआ मिलता है, लिहाजा यहां भी औरत को मुतआ मिलेगा भाई। और ये जो बाद में इन्होंने आपस में तय किया है, बाद में जो आपस में मुकरर किया है, इसका यहां कोई एतबार नहीं है जब तलाक दी जाए सोहबत से पहले। सोहबत के बाद तलाक देगा फिर तो वो सोहबत की वजह से वो महर पक्का हो गया जो आपस में तय किया था, वो सारा देना पड़ेगा। लेकिन सोहबत से पहले अगर तलाक देगा तो वो जो बाद में मुकरर किया है उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि अकद को देखा जाएगा। और अकद में तो कुछ भी जिक्र नहीं किया था, और जब आकद में महर को बिल्कुल जिक्र ही ना किया जाए और वहां औरत को सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो मुतआ देना पड़ता है, लिहाजा यहां भी मुतआ देना पड़ेगा। ये हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल यह था कि बाद में जो मुकरर किया है उसी का निसफ देना पड़ेगा, और यही मजहब है इमाम शाफई रहमतुल्लाह का। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि महर बेशक बाद में मुकरर किया है और सोहबत से पहले तलाक दे दी है, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फनिस्फु मा फरस्तुम, कि वो जो तुमने मुकरर किया है उसका निसफ देना पड़ेगा। فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, वो जो तुमने मुकर्रर किया है उसका निसफ यानी वो औरत को मिलेगा। तो यहां मुकर्रर करने का जिक्र है और यहां कोई कैद मौजूद नहीं है कि आकद के अंदर जो मुकर्रर किया है उसका निसफ देना पड़ेगा या आकद के बाद जो मुकर्रर किया है उसका निसफ देना पड़ेगा। लिहाजा अगर आकद में मुकर्रर किया हो तो उसका भी निसफ देना पड़ेगा, और अगर आकद में मुकर्रर नहीं किया था बाद में मुकर्रर किया है तो यह भी तो मुकर्ररा तो है, तो इसी का निसफ देना पड़ेगा। यह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल है और यही मजहब है इमाम शाफई रहमतुल्लाह का। जबकि हमारे अइमा फरमाते हैं कि यह जो आकद किया था बगैर महर जिक्र किए तो इस सूरत में महर मिसल आया करता है, क्योंकि महर ने तो जरूर आना है निकाह में, तो लिहाजा इन्होंने महर को जिक्र किए बगैर निकाह किया और महर मिसल आ गया। बाद में अब ये दोनों राजी हो गए, मसलन खावन कहते हैं मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा, तो ये जो 1,00,000 रुपए बाद में मुतय्यन कर रहे हैं ये उसी महरे मिसल का कायम मकाम है, ये उसी महरे मिसल की तायीन कर रहे हैं जो निकाह की वजह से यहां आया था जी। क्योंकि निकाह कैसे किया था महर को जिक्र किए बगैर, और इस सूरत में क्या आता है महरे मिसल, तो यहां तो महरे मिसल आया था। अब बाद में ये जो आपस में बाहमी रजामंदी से एक मुकर्रर कर रहे हैं ये दरअसल उसी महरे मिसल की तायीन कर रहे हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है। क्योंकि अगर ये अलग चीज आप शुमार करेंगे तो फिर इस सूरत में गोया दो वाजिब हो जाएंगे उस आदमी पर, एक आकद की वजह से महरे मिसल और एक बाद में अलग जो मुकर्रर कर रहे हैं। हालांकि निकाह की वजह से खावंद पर एक माल वाजिब होता है, दो माल वाजिब नहीं होते। तो लिहाजा मालूम हुआ ये जो बाद में मुकर्रर कर रहे हैं ये उसी महरे मिसल का कायम मकाम है, उसी के दर्जे में है, ये उसी की तायीन की जा रही है। जब ये उसी की तायीन है तो इसका महरे मिसल वाला ही हुक्म होगा। देखो जब निकाह किया जाए और उसमें महर मुकर्रर किया है और सोहबत से पहले खावन तलाक देगा तो मुकर्ररा महर की तंसीफ होती है, आधा दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी जिक्र नहीं किया और वहां महर मिसल आ गया और फिर सोहबत से पहले तलाक देता है खावन तो उस महर मिसल की तंसीफ नहीं की जाती बल्कि औरत को मुता दिया जाता है। तो मालूम हुआ महर मिसल की तंसीफ नहीं की जाती, तो जब महर मिसल की तंसीफ नहीं की जाती तो उसका जो कायम मकाम मुकर्रर किया है मसलन 1,00,000 रुपए उसकी भी तंसीफ नहीं की जाएगी बल्कि मुता ही देंगे जी। क्योंकि ये किसके कायम मकाम है महर मिसल के, तो इसका हुक्म भी महर मिसल वाला, और महर मिसल की तो तंसीफ नहीं की जाती। महर मिसल जब आता है और सोहबत से पहले तलाक दे दी जाए तो फिर वहां मुता आता है, तो यहां भी क्या देना पड़ेगा मुता ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर वह इन तजहा वलम यूसम मिलहा महरन, और अगर उस आदमी ने उस औरत से निकाह किया वलम यूसम मिलहा महरन इस हाल में कि उसके लिए महर मुकर्रर नहीं किया, सुम तराजया अला तस्मियती ही, तराज आया तस्निया का सीगा है, फिर दोनों बाहम राजी हो गए अला तस्मियती ही महर के मुकरर करने पर, कि मसलन दोनों ने बाद में 1,00,000 रुपया मुकरर कर दिया, फहिया लहा इन दखल बिहा और माता अनहा, तो यही मुकररा औरत को मिलेगा अगर खावंद ने उससे सोहबत कर ली या खावंद उसको छोड़कर मरा। देखा सोहबत से भी वह महर पक्का हो गया जो बाद में मुकरर किया है, और खामन का अगर सोहबत से पहले इंतकाल हो जाए फिर भी वही महर देना पड़ता है। वह इन तल्ला कहा कबल दुखूली बिहा, और अगर खामन ने उसको तलाक दे दी उसके साथ सोहबत करने से पहले, फला हल मुतातू, तो फिर इस औरत को मुता मिलेगा, ये जो बाद में मुकरर किया है इसका एतबार नहीं है। वह अला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला अल अव्वली, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के पहले कौल पर निस्फ हाजल मफरूजी, ये जो बाद में मुकरर किया गया है इसका निसफ देना पड़ेगा। ये पहला कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का। दूसरे कौल में वो भी तरफेन के साथ हैं कि मुता ही देना पड़ेगा। तो कहते हैं वाला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला अल अव्वली निस्फ हाजल मफरूजी, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के पहले कौल पर इस मुकर्ररा का निसफ देना पड़ेगा। मफरूज मुकर्ररा, फराजा यफरीजु फर्जन का माना है मुकर्रर करना, लाजिम करना, तो मफरूज का क्या माना मुकर्ररा। तो कहते हैं निसफ हाद अल मफरूज, इसी ये जो मुकर्रा है जो निकाह के बाद मुकर्रर किया है, इस मुकर्रा का निसफ होगा औरत के लिए। वह हुआ कौल शाफिई रहिमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफिई रहिमहुल्ला का भी। लिअन्नहु मफरूज़ुन, क्योंकि ये मुकर्रा है, ये जो बाद में मुकर्रर किया ये भी तो मुकर्रा है। फयतनस्सफु बिन नस्सी, तो ये आधा हो जाएगा बिन नस्सी, नस की वजह से। मैंने बताया नस जो है कुरान और हदीस को कहते हैं, तो नस के अंदर आधा करने का हुक्म था। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, फनिस्फु मा फरज़्तुम, जो तुमने मुकर्रर किया है उसका निसफ है औरत के लिए। तो ये भी मफरूज है, ये भी क्या है, मफरूज है, मुकर्रा है। और आयत के अंदर जिक्र है जो तुमने मुकर्रर किया है उसका निसफ दे दो, और आयत में तख्सीस नहीं है कि कौन सा वाला मुकर्रा मुराद है। एक वो जो अकद के अंदर मुकर्रर किया जाए यानी मफरूज फिल अकद, और एक जो बाद में मुकर्रर किया गया है मफरूज बाद अल अकद। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के पहले कौल की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं आयत में सिर्फ इतना जिक्र है मुकर्रा का निसफ दे दो, आयत में यह तफसील नहीं है कि आकद में जो मुकर्रर किया है उसका निसफ दे दो या आकद के बाद जो मुकर्रर किया है उसका निसफ दे दो। तो आयत मालूम हुआ मुतलक है, तो दोनों कसूरतों को यह शामिल है। अगर अकद में मुकर्रर किया है तो उसका निसफ देना पड़ेगा, और अगर अकद में मुकर्रर नहीं किया तो उसके बाद जो मुकर्रर किया है। बात समझ में आ गई, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मफरूज आम है, मुकर्रा होना आम है, चाहे मफरूज फिल अकद हो चाहे मफरूज बादल अकद हो, दोनों सूरतों में उसी मफरूज का निसफ देना पड़ेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मफरूज का निसफ देना पड़ेगा, और वो मफरूज आम है, चाहे मफरूज फिल अकद हो, अकद में मुकर्रर किया था, या मफरूज बादल अकद, अकद के बाद निकाह के बाद किसी वक्त मुकर्रर किया है। तो आयत के अंदर मफरूज आम है, वो दोनों को शामिल है। तो ये माना है ली अन्नहु मफरूज़ुन, इसलिए क्योंकि उनके नजदीक ये मुकर्रा है। फयतनस्सफु बिन नस्सी, तो ये आधा हो जाएगा नस की वजह से। वलना, हमारी दलील ये है कि अन्न हाद अल फर्ज तायीनुन लिल वाजिब बिल अक्दी, कि अन्न हाद अल फर्ज, फर्ज का माना अभी मैंने बताया मुकर्रर करना। अन्न हाद अल फर्ज, ये जो मुकर्रर करना है, तायीनुन लिल वाजिब बिल अक्दी, ये दरअसल तायीन की जा रही है वो जो वाजिब हुआ था अकद की वजह से। अकद में इन्होंने महर जिक्र नहीं किया, तो जब महर जिक्र ना किया जाए तो वहां क्या आता है, महरे मिसल। अब बाद में दोनों आपस में तय कर रहे हैं कि मसलन एक लाख रुपए खावन दे देगा, तो ये जो बाद में तायीन कर रहे हैं ये दरअसल वही चीज जो आकद की जो वजह से वाजिब हुई थी यानी महरे मिसल, ये उसी की तायीन कर रहे हैं, ये उसी की तायीन कर रहे हैं, ये कोई अलग चीज नहीं। वरना तो कहना पड़ेगा कि मर्द पर दो माल लाजिम हो गए, एक आकद की वजह से महरे मिसल और एक बाद में आपस में एक लाख रुपया जो तय किया, हालांकि इस आकद की वजह से दो माल खामंद पर नहीं आते बल्कि एक माल आता है। तो मालूम हुआ ये जो बाद में एक लाख रुपए तय कर रहे हैं ये कोई अलग चीज नहीं है, ये उसी महरे मिसल की तायीन कर रहे हैं, वो महरे मिसल जो आकद की वजह से वाजिब हुआ था। वलना, और हमारी दलील यह है कि नहाद अल फर्जा, कि ये जो मुकर्रर करना है तायीन, ये तायीन की जा रही है लिल वाजिब बिल अक्दी, वो जो वाजिब हुआ था अकद की वजह से। भाई वो क्या वाजिब हुआ था, कहते हैं वह हुआ महरुल मिसली, वो जो आकद की वजह से वाजिब हुआ था वो महरे मिसल है, तो ये उसकी तायीन की जा रही है। वदालिका ला यतनस्सफु, और महरे मिसल जो है वो तो आधा नहीं होता, उसकी तो तंसीफ नहीं होती। महरे मिसल जब आए और सोहबत से पहले तलाक दे तो मुता देना पड़ता है, महरे मिसल को आधा नहीं किया जाता। तो कहते हैं वदालिका ला यतनस्सफु, और वो महरे मिसल तो आधा नहीं होता। फकदा मानुज़िला मंज़िलतहु, तो इसी तरह होगा वो जो इसके दर्जे में उतारा गया है यानी जो इसका कायम मकाम हुआ है उसका भी यही हुक्म होगा, उसकी भी तंसीफ नहीं की जाएगी। भाई आगे देखिए, वल मुरादु बिमा तलल फर्ज़ु फिल अक़्दी इज़ हुवल फर्ज़ुल मुतआरफ। अब जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला की दलील का। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने के कौल अव्वल के मुताबिक जो बाद में मुकरर किया है उसी का निसफ देना पड़ेगा अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी। वो क्या फरमाते थे, कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, फनिसफु मा फरजतुम, मा फरजतुम जो तुमने मुकरर किया है उसका निसफ दे दो, और जो तुमने मुकरर किया ये तो आम है, इसमें तो कोई कैद नहीं है कि आकद के अंदर मुकरर किया है या आकद के बाद मुकरर किया है, तो लिहाजा जो भी मुकरर किया हो चाहे आकद में मुकरर किया हो उसका निसफ देना पड़ेगा, और चाहे आकद के बाद मुकरर किया हो तो उसका निसफ देना पड़ेगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि आयत के अंदर जो मा फरज तुम है इससे मुराद वो मुकररा है जो आकद के अंदर मुकरर किया जाए। वजह यह है कि निकाह जब भी किया जाता है महर जरूर मुकरर किया जाता है, और ऐसा बहुत कम और नादिर होता है कि निकाह किया जाए और उसमें महर को मुकरर न किया जाए। तो लिहाजा जब मुकररा की बात की जाए तो लोग इससे वो वाला मुकररा समझते हैं जो अकद में मुकरर किया गया था, और जो बाद में मुकरर किया जाए उसकी तरफ किसी का जहन नहीं जाता। तो मालूम हुआ लोगों के अंदर मुतआरफ क्या है, शाय और राइज क्या है, कि ये इस मुकररा से कौन सा मुकररा मुराद लेते हैं, जो अकद के अंदर मुकररा है वो मुराद लेते हैं, अकद के बाद जो मुकररा है वो मुराद नहीं लेते, क्योंकि वो तो बहुत नादिर होता है। तो लिहाजा हम भी मानते हैं आयत के अंदर मा फरज तुम मुतलक है, लेकिन मुतलक को मुतआरफ पर महमूल किया जाता है, और लोगों में मुतआरफ क्या है, वो इस मा फरज तुम से कौन सा मा फरज तुम मुराद लेते हैं, जो अकद के अंदर मुकरर किया गया हो, जो बाद में मुकरर किया गया हो वो मुराद नहीं लेते। तो यह माना है वल मुरादु बिमा तला, और मुराद उस आयत से जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने तिलावत की, अल फर्जु फिल अक्दी, वो जो मुकरर किया गया है अकद में वो वाला मुकररा मुराद लेते हैं, इद हुवल फर्जुल मुतआरफु, इसलिए क्योंकि वही राइज फर्ज है, वही राइज मुकररा महर है। भाई बात समझ में आ गई, लोगों में राइज क्या है, मुकररा से कौन सा महर मुराद लेते हैं, जो निकाह में मुकरर किया जाए, तो ये फर्ज मुतआरफ है, तो इसी माना पर इसको महमूल करेंगे। आगे देखिए, قال فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر رحمه الله وسنذكره في زيادة الثمن والمسمن إن شاء الله। भाई याद रखिए, निकाह के अंदर महर मुकरर कर दिया गया, बाद में खावंद महर में ज्यादती करना चाहता है, मसलन आकद के अंदर 1 लाख रुपया महर मुकरर किया गया था, बाद में खावंद कहते हैं मैं तुम्हें महर के तौर पर 1 लाख रुपया नहीं दूंगा बल्कि 2 लाख रुपए दूंगा, तो हमारे नजदीक महर के अंदर ज्यादती जायज है, और अब खावंद को ये 2 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, ये ज्यादती उस पर क्या हो गई, लाजिम हो गई। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि महर में बाद में ज्यादती नहीं की जा सकती, वो फरमाते हैं कि महर तो उतना ही रहेगा जो आकद यानी निकाह के अंदर मुकरर किया था यानी 1 लाख रुपया, और ये जो 1 लाख रुपया जायद खावन जिक्र कर रहा है ये खावन की तरफ से हिबा शुमार होगा यानी तोहफा शुमार होगा, ये खावन की तरफ से तोहफा शुमार होगा, और तोहफा यानी हिबा तब ताम होता है, कामिल होता है, जब दूसरा शख्स उस तोहफे पर कब्जा कर ले। आप एक आदमी को मसलन तोहफे के तौर पर एक गाड़ी देते हैं और आप उसे कहते हैं कि यह गाड़ी आज से आपकी है, तो याद रखो सिर्फ आपके कहने से हिबा और यह तोहफा ताम नहीं हुआ, बल्कि यह गाड़ी जब आप उसके कब्जे में दे देंगे तब हिबा ताम हो जाएगा, तब वो इस गाड़ी का मालिक बन जाएगा, सिर्फ आपके कहने से वो गाड़ी का मालिक नहीं। और नीज ये भी याद रखना कि हिबा के अंदर रुजू भी जायज है। भाई आपने किसी को तोहफा दिया है और बाद में वापस लेना चाहते हैं तो आप तोहफा वापस ले सकते हैं, अगरचे ये पसंदीदा नहीं लेकिन शरान आपके लिए जायज है, लेकिन इसमें जरूरी है कि दूसरा आदमी जिसको आपने तोहफा दिया था कि वो भी राजी हो। आप भी वापस लेना चाहते हैं और वो भी वो चीज वापस करने पर राजी है, तो आप उस चीज को उससे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तो उस चीज को वापस लेना चाहते हैं और वो देने पर राजी नहीं है, तो फिर आपको काजी के पास जाना पड़ेगा और काजी फिर आपको आपकी चीज वापस दिला देगा। मालूम हुआ हिबा में रुजू भी हो सकता है, और नीज मालूम हुआ कि हिबा जब तक उसके कब्जे में नहीं दिया जाएगा वो हिबा ताम और कामिल नहीं, वो उस चीज का मालिक भी नहीं बनेगा। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो खावंद ने जायद माल जिक्र किया है ये असल महर के साथ नहीं मिलेगा, ये खावंद पर लाजिम नहीं, ये हिबा है। सिर्फ कहने से औरत मालिक नहीं बनी, खावंद जब दे देगा तब औरत मालिक बनेगी और ये अलग हिबा ही शुमार होगा। और जैसे हिबा के अंदर कोई शख्स रुजू कर सकता है, इस तोहफे के अंदर भी खावंद रुजू कर सकता है। जबकि हमारे नजदीक ये जो खावंद ने माल बढ़ा दिया ये असले महर के साथ ही मिल गया, और खावंद अगर सोहबत कर ले या सोहबत से पहले खावंद का इंतकाल हो जाए तो ये महर उस पर लाजिम हो जाएगा, ये इजाफे के साथ ही सारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोहबत से पहले खावंद ने तलाक दे दी तो फिर इस सूरत में याद रखो हमारे नजदीक वो जो आकद के अंदर मुकरर किया था उसी का निसफ देना पड़ेगा, जो बाद में मुकरर किया है ज्यादा करके उसका निसफ नहीं। इसलिए क्योंकि अभी बात गुजरी कि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, फनिसफ मा फरजतुम, कि जो तुमने मुकरर किया है उसका निसफ दे दो। और ये मा फरजतुम तो आम है, मुतलक है, लेकिन मुतलक को मुतआरफ माना पर महमूल किया जाता है और लोगों के यहां राइज और शाय क्या है इससे वो कौन सा मुकर्ररा मुराद लेते हैं जो अकद के अंदर मुकर्रर किया गया हो। तो लिहाजा यहां पर भी अगर सोहबत से पहले तलाक दी तो जो अकद के अंदर मुकर्ररा है उसका निसफ देना पड़ेगा, ये जो बाद में ज्यादती के साथ मुकर्रर किया है इसका निसफ मुराद नहीं होगा। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فإن زادها في المهر بعد العقد اگر خاوند نے عورت کے لیے بڑھا دیا مہر میں بعد العقد عقد کے بعد لزمت الزیادت تو خاوند پر وہ زیادتی لازم ہو جائے گی اب وہ دینا پڑے گی اگر صحبت کر لیا خاوند کا انتقال ہوا وہ دینا پڑے گی خلافا لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں نہیں یہ ہبہ ہے یہ خاوند پر لازم نہیں ہے وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ السَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ إِنشَاءَ اللَّهُ اور عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے سمن اور مسمن کی زیادتی میں انشاء اللہ سمن اور مسمن سمن تو آپ جانتے ہیں بیع کے اندر مبیعے کا جو بھی عوض طے کر لیا جائے وہ سمن کہلاتا ہے تو ایک تو ہوتی ہے قیمت وہ نرخ جو بازار میں متعین ہوتے ہیں چیزوں کی قیمت اور ایک ہے سمن سمن جو ہے بائے اور مشتری کے درمیان جو بھی طے ہو جائے وہ سمن کہلاتا ہے اور مسمن مسمن سے یہاں مراد مبیعہ ہے تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ السَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ ہم اس کو ذکر کریں گے سمن اور مبیعے کی زیادتی میں یعنی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو میں کتاب البیع کے اندر ذکر کروں گا یعنی ہدایہ کی تیسری جلد میں وہ پھر ذکر فرماتے ہیں تفصیل یاد رکھو آپ یہیں پر سمجھ لیں یاد رکھو وہاں آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک سمن اور مبیعہ دونوں میں زیادتی جائز ہے مثلا میں نے آپ سے ایک گاڑی 10 لاکھ روپے میں خریدی اور پھر بعد میں 10 لاکھ روپے کے بجائے آپ کو 12 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ لو بھائی یہ میری طرف سے سمن میں میں اور اضافہ کر کے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ مشتری کے لیے جائز ہے وہ سمن میں زیادتی کر سکتا ہے جبکہ بائے کے لیے جائز ہے وہ مبیعے میں زیادتی کر سکتا ہے مثلا میں نے آپ سے 100 من گندم خریدی اور آپ پھر مجھے 100 من کے بجائے 120 من ادا کر دیتے ہیں کہ لے بھائی یہ آپ سارا رکھیں تو بائے مبیعے میں زیادتی کر سکتا ہے اور مشتری سمن میں اور یاد رکھو یہ جو زیادتی ہے یہ اصل عقد کے ساتھ ہی مل جائے گی आपने मुझे 100 मन के बजाय 120 मन गंदुम दी है तो यूं ही समझेंगे मैंने आपसे खरीदी ही 120 मन है। यह नहीं शुमार करेंगे कि 100 मन तो मबिया है और 20 मन आपने मुझे तोहफा दिया है। नहीं नहीं, वो जो जायद है वो भी असल के साथ मिल जाएगा, मबिया के साथ मिल जाएगा और यूं समझेंगे यहां मबिया ही 120 मन गंदुम है। इसी तरह मैंने अगर समन में ज्यादती की है 10 लाख रुपए की बजाय 12 लाख रुपए आपको अदा किए हैं तो यूं समझा जाएगा गोया इस चीज की कीमत ही 12 लाख है, इसके समन ही 12 लाख हैं। ऐसा नहीं कि 10 लाख तो समन है और 2 लाख मैं आपको तोहफे के तौर पर दे रहा हूं। नहीं नहीं, तो गोया जो मबिया या समन में ज्यादती की जाए वह असले अकद के साथ ही मिल जाएगी। लिहाजा अब अगर बाद में हम दोनों इकाला करते हैं, इस बैअ को फसख करते हैं, मसलन मैं आपके पास आ गया और मैंने कहा कि यह बैअ फसख कर लें, मुझे अब पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो अब जो मैंने 120 मन गंदुम ली थी वो सारी मुझे वापस करना पड़ेगी क्योंकि वो सारा मबिया है। और इसी तरह अगर आप जो है वो उस बैग को फसख करना चाहते हैं तो फिर आपको वो सारे के सारे 12 लाख रुपए वापस करना पड़ेंगे क्योंकि वो सारे समन थे। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि समन या मबीए में ज्यादती नहीं हो सकती। अगर आप समन में ज्यादती करेंगे, ज्यादती कर सकते हैं आप, लेकिन वह समन के साथ ज्यादती नहीं मिलेगी बल्कि वह अलग तोहफा शुमार होगा। और इसी तरह बाय मबिया में ज्यादती कर सकता है लेकिन वो जो जायद है उसको मबिया नहीं शुमार करेंगे, वो अलग तोहफा शुमार होगा। लिहाजा अगर हम बाद में अकद फसख करते हैं, बाद में अकद फसख करते हैं तो उस फसख के अंदर सिर्फ असल का लौटाना जरूरी है, जायद का लौटाना जरूरी नहीं। जायद हिबा है और हिबा के अंदर भी रुजू हो सकता है अगर दोनों राजी हों, और अगर दोनों राजी नहीं तो फिर काजी के पास जाकर रुजू किया जा सकता है। इख्तिलाफ समझ में आ गया। तो कहते हैं सनज कुरुहु फी जियादती समनी वल मुसमनी इंशा अल्लाह, और अन करीब हम इसको जिक्र करेंगे समन और मबीए की ज्यादती के अंदर इंशा अल्लाह। आगे देखिए वह इदा साहति ज्यादत उतस कुतुबित तलाक। अब वही तफसील जिक्र कर रहे हैं जो मैंने बयान कर दी। महर 1 लाख तय हुआ था, बाद में खावन ने क्या कहा, मैं 2 लाख दूंगा, और फिर इस सूरत में जो जायद खावन ने किया है वो खावन पर लाजिम हो गया, उसको सारा अदा करना पड़ेगा। कब? अगर खावन सोहबत कर लेता है या सोहबत से पहले खावन का इंतकाल हो जाए, तो जो भी मुकरर कर लिया है बाद में ज्यादती के साथ वो सारा देना पड़ेगा। और अगर सोहबत से पहले तलाक देता है तो हमारे नजदीक निस्फ मफरूज देना पड़ता है। और कौन सा मफरूज? मफरूज फिल हकद। हमारे नजदीक वो जो मफरूज फिल हकद था उसी का निसफ देना पड़ेगा, वो जो बाद में मुकरर किया है उसका कोई एतबार नहीं। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के पहले कौल के मुताबिक जो बाद में मुकरर किया है उसी का निसफ देना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारे नजदीक मा फरस तुम से मुराद मफरूज फिल हकद है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के पहले कौल के मुताबिक मा फरस तुम आम है, चाहे मफरूज फिल हकद हो या चाहे मफरूज बादल अकद हो। तो कहते हैं वह इदा सहती ज्यादत, और जब ज्यादती सही है, जब ज्यादती सही है, अभी गुजरा ना मसाला कि खावन महर में ज्यादती कर सकता है और वो खावन पर लाजिम हो जाएगी। तो कहते हैं वह इदा सहती ज्यादत, और जब ज्यादती सही है तो तस कुतुबित तलाक कबलत दुखूली, तो यह ज्यादती साकित हो जाएगी सोहबत से पहले तलाक की वजह से। वाला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला अव्वलन, और इमाम अबू यूसुफ रहमला के पहले कौल पर ततनस्सफु माल असली, यह ज्यादती भी आधी होगी असल के साथ। जो अकद में मुकरर किया था वो असल, और बाद में जो जायद किया तो असल के साथ यह ज्यादती भी निसफ होगी, असल की भी तनसीफ और जो बाद में जायद है उस जायद की भी तनसीफ, यानी मजमूए की तनसीफ हो जाएगी। लिअन्ना निस्फ इंदहुमा यख्तसु बिल मफरूज फिल अक्दी, इसलिए क्योंकि वो निसफ जो है तरफेन के नजदीक यख्तसु वो खास है बिल मफरूज फिल अक्दी, मफरूज फिल अक्द के साथ वो निसफ खास है, मफरूज फिल अक्द के साथ वो निसफ मुराद है وعندہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول کے مطابق ان کے نزدیک المفروض بعدہ کل مفروض فیہ کہ وہ جو مفروض بعد العقد ہے وہ اسی طرح ہے کل مفروض فیہ جیسے کہ مفروض فی العقد علامہ مر اس وجہ سے جو بات گزر گئی تفصیل پیچھے گزر گئی وہ ان حتت عنہ من مہرہا صح الحت بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا کہ ابتداءً یہ جو مہر ہے یہ حق شرع بھی ہے اور یہ حق المرأ بھی ہے لہذا مہر کا ہونا بھی ضروری اور نیز 10 درہم سے کم بھی نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں یہ صرف عورت کا حق ہے تو لہذا بقاءً جب یہ صرف عورت کا حق ہے تو عورت اس مہر میں کمی بھی کر سکتی ہے اور چاہے تو سارا بھی معاف کر سکتی ہے کیونکہ اس کا اپنا حق ہے اور صاحب حق اپنا حق معاف کرے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وہ ان حتت عنہ من مہرہا اور اگر عورت نے کمی کر دی اس کے لیے اپنے مہر میں سے صح الحت تو یہ کمی صحیح ہے لان المہر حقہا اس لیے کیونکہ یہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے والحت یلاقیہ حالت البقا اور اس کمی نے ملاقات کی ہے مہر سے بقا کی حالت میں بقا کی حالت میں عورت نے کمی کی ہے مہر میں اور بقا کی حالت میں تو مہر صرف عورت کا حق ہوتا ہے تو یہ کمی لہذا عورت کر سکتی ہے تو کہتے ہیں والحت یلاقیہ حالت البقائی اور کمی نے ملاقات کی ہے مہر کے ساتھ بقا کی حالت میں لہذا کمی ہو جائے گی آگے دیکھیے وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْئِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ بھئی گزشتہ سبق میں ذکر آیا تھا خلوت کا میں نے بتایا تھا خلوت صحیحہ وہ بھی وطی اور صحبت کے قائم مقام ہے خلوت صحیحہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں صحبت سے کوئی مانع نہیں جہاں وطی سے کوئی مانع نہیں مثلا دروازہ بھی بند ہے کمرے کا اور اسی طرح مرد اور عورت میں سے کوئی بیمار بھی نہیں ہے اور انہوں نے رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا ہوا یا اسی طرح دونوں میں سے کوئی حالت احرام میں بھی نہیں ہے یا اسی طرح عورت جو ہے حیض کی حالت میں بھی نہیں ہے تو یہ جتنے موانع ہیں جو چیزیں مانع بننے والی ہیں صحبت سے ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں تو اب یہ صرف خلوت پائی گئی خاوند نے صحبت نہیں کی لیکن یہ خلوت صحیحہ ہے یہاں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں لہذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو صحبت کا تھا اور جیسے صحبت کی صورت میں خاوند کو پورا مہر دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی خاوند کو پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ موجود ہوئی یعنی دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے یا دونوں میں سے کسی نے احرام باندھا ہوا ہے حج یا عمرے کا یا دونوں میں سے کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو کہ یہ خلوت فاسدہ ہے بھائی یہ کیا ہے خلوت فاسدہ اور خلوت فاسدہ کی صورت میں پورا مہر نہیں آئے گا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ اور جب خلوت کی آدمی نے اپنی بیوی سے وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْئِ خلوت کی خلوت کا معنی تنہائی تنہائی وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ اور جب آدمی نے تنہائی کی اپنی بیوی کے ساتھ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْئِ اور وہاں پر کوئی وطی سے مانع چیز بھی نہیں ہے ثم طلقها پھر اس خلوت صحیحہ کے بعد خاوند نے اس کو طلاق دے دی فلها کمال المہر تو عورت کے لیے پورا مہر ہوگا اگرچہ خاوند نے صحبت نہیں کی لیکن یہ خلوت صحیحہ بھی کس کے قائم مقام ہے صحبت کے قائم مقام ہے وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لها نصف المہر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے نصف مہر ہے کیا ہے نصف مہر ملے گا وجہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں کے درمیان عقد نکاح ہوا ہے اور عقد نکاح کے اندر خاوند کے ذمے مہر آتا ہے تو خاوند مہر ادا کرے گا تو عورت منافع بزع حوالے کرے گی تو یہاں پر تو خاوند نے منافع بزع وصول نہیں کیے اس نے تو صحبت نہیں کی لہذا جب معقود علیہ اس نے وصول نہیں کیا یعنی جس پر عقد ہوا تھا तो जब उसने माकूदुन अलैह को वसूल नहीं किया तो उस पर भी महर पूरा वाजिब नहीं होगा भाई, बल्कि निस्फ महर ही देना पड़ेगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह इन तलक तुमुहुन्ना मिन कबली अंत मसूहुन्ना, कि अगर तुम इन औरतों को तलाक दे दो इनको छूने से पहले यानी इनसे सोहबत करने से पहले, वकद फरस तुम लहुन्ना फरीजतन, और तहकीक उनके लिए तुमने महर भी मुकरर किया हो, फनिस्फ मा फरस तुम, तो जो मुकरर किया हो उसका निसफ आएगा। मालूम हुआ पूरा महर सोहबत ही की सूरत में आएगा, मिन कबली अंत मसूहुन्ना, छूने से पहले सोहबत से पहले, चाहे खलवते सहीहा भी आ जाए लेकिन सोहबत तो नहीं की, सिर्फ सोहबत की सूरत में पूरा महर है, सोहबत नहीं की तो निस्फ महर ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल शाफी रहिमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं लहा निस्फुल महरी, की इस औरत के लिए निस्फ महर ही होगा जिससे खावन ने खलवत सहीहा की है। लिअन्न अलमाकूद अलैहि इन्नमा यसीरु मुस्तौफन बिल वत्ई, इसलिए क्योंकि माकूदुन अलैहि यानी जिस चीज पर आकद किया गया था यानी बुजा के मनाफे, वो इन्नमा यसीरु मुस्तौफन बिल वत्ई, वो तो वती के जरिए वसूल होंगे, वती की जाएगी तो फिर मुनाफा बुजा वसूल हो गए, अब खावंद पर पूरा महर आ जाएगा। और यहां तो खलवते सहीहा पाई गई है, वती तो नहीं पाई गई, जब वती नहीं पाई गई तो महर भी पूरा नहीं आएगा। कहते हैं फला यताअक्कदुल महरु दूनहु, लिहाजा इस सोहबत के बगैर महर पक्का नहीं होगा। वलना, हमारी दलील यह है कि अन्नहा सल्लमतिल मुबदला हैसु रफअतिल मवानिअ, हम कहते हैं कि देखो ये जो महर है ये बदल है और मुनाफे बुजा जो है वो मुबदल हैं, और यहां यहां औरत ने मुबदल सुपुर्द कर दिया है इसलिए क्योंकि उसने मवानिअ दूर कर दिए, क्योंकि जब वो खावन के साथ ऐसी जगह पर इकट्ठी हो गई जहां किसी किस्म का कोई मानिअ नहीं, तो उसने तो अपने आप को खावन के सुपुर्द कर दिया, इससे ज्यादा तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है भाई, वती करना तो खावन का काम है भाई, तो उस औरत की गुंजाइश में जितना था उसने कर दिया है, उसने अपने आप को खावन के सुपुर्द कर दिया, और जब खावन के सुपुर्द अपने आप को कर दिया तो अब खावन पर पूरा महर पूरा बदल वाजिब हो गया। ये माना है वलना, और हमारी दलील यह है कि नहा सल्लमतिल मुबदला, के औरत ने मुबदल को यानी ऐवज को सुपुर्द कर दिया है, हैसु रफअतिल मवानिअ, इस तौर पर कि उसने मवानिअ को दूर कर दिया है, वदालिका वुसुहा, और यही उस औरत की गुंजाइश में था, वो इतना ही कर सकती थी। फयतअक्कदु हक्कुहा फिल बदल, लिहाजा उस औरत का हक जो है वो पक्का हो जाएगा बदल में, अब खावन को पूरा महर देना पड़ेगा, अब पूरा बदल यानी महर देना पड़ेगा। एतबारन बिल बै, कियास करते हुए बै पर, याद रखो बै के अंदर मुश्तरी और बाय के दरमियान जब ईजाब और कबूल हो जाए, मसलन आपकी जेब पर एक कलम लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा यह कलम मैंने आपसे 100 रुपए का खरीद लिया, आपने कहा मुझे मंजूर है, जैसे ही हम दोनों ने इजाब और कबूल किया साथ ही मुश्तरी उस मबीए का मालिक बन गया, अब कलम बेशक आपकी जेब पर लगा हुआ है लेकिन मैं उसका मालिक बन चुका हूं, लिहाजा अब मेरे जिम्मे समन आ गए कि मुझे समन देने पड़ेंगे, लिहाजा मैं अब आपसे कहता हूं कि लाओ भाई ये कलम का मैं मालिक बन गया हूं, लिहाजा अब ये कलम मेरे हवाले कर दो, तो बाय को हक हासिल है कि वो मबीए को रोक लेके नहीं भाई पहले पैसे मेरे हवाले करो, तो लिहाजा बै होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है और उसके जिम्मे पैसे आ जाते हैं, लेकिन अभी पैसों की अदायगी उस पर वाजिब और लाजिम नहीं, जब बाय मबीआ हवाले करेगा तो मुश्तरी पर भी पैसे देना और पैसे हवाले करना वाजिब हो जाएंगे। और फुकहा फरमाते हैं कि मबीआ जो है मुश्तरी के कब्जे में देना जरूरी नहीं है, बल्कि बाय जो है माने और रुकावटों को दूर कर दे तो भी मुश्तरी पर वाजिब हो गया कि अब वो पैसे अदा करे। मसलन अब आपकी जेब पर कलम है तो अब आप पर लाजिम नहीं है कि कलम मेरे हवाले करें फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि आप कलम अपनी जेब से उतारते हैं और सामने रख देते हैं कि लीजिए जी ये आप अपना कलम ले लीजिए, बस जैसे ही आपने रुकावटें दूर कर दी अब मुश्तरी पर लाजिम हो गया कि आपके पैसे आपके हवाले कर दे। मालूम हुआ मबीए के अंदर भी मुश्तरी पर माल और बदल तब लाजिम होता है जब वो रुकावटें दूर कर दे, बाकायदा उसके हवाले करना लाजिम नहीं। जब रुकावटें दूर कर दी वो खुद उठा लेगा, कब्जा कर लेगा, वो चाहे कब्जा करे या ना करे, लेकिन आप उसको पैसे देने पड़ेंगे भाई। तो लिहाजा जब बया के अंदर रुकावटें दूर करने से मुश्तरी पर इवज यानी समन लाजिम हो जाते हैं, तो यहां पर भी जब औरत ने सारी रुकावटें दूर कर दी तो खावन पर अब बदल लाजिम हो गया, पूरा महर देना पड़ेगा। तो यह माना है, कहते हैं फयता अक्कद हक्कुहा फिल बदली, तो उस औरत का हक पक्का हो जाएगा बदल में यानी महर के अंदर, एतबारन बिल बै, कियास करते हुए बै पर। बात समझ में आ गई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तो दलील के तौर पर आयत जिक्र की थी, दलील के तौर पर आयत जिक्र की थी, क्या मिन कब्ल अन तमस्सुहुन्ना, उनको छूने से पहले। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं छूने से पहले यानी सोहबत से पहले पूरा महर वाजिब नहीं हो सकता भाई। और ए अहनाफ, आप तो छूने से पहले ही खलवत सहीहा की वजह से हुक्म लगा रहे हैं कि पूरा महर देना पड़ेगा, तो आप तो आयत के मुकाबले में कियास पेश कर रहे हैं कि औरत ने चूंकि अपने आप को सुपुर्द कर दिया है लिहाजा अब खावन को भी पूरा बदल देना पड़ेगा, तो आप आयत के मुकाबले में कियास पेश कर रहे हैं। तो उसका हम जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं कि यह आयत आम मखसूसुल बास है, यह बात पहले बयान हो चुकी है। आयत में क्या आया, वइन तल्लक्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, अगर तुम इन औरतों को तलाक दो इनके साथ सोहबत करने से पहले, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़तन, इस हाल में कि तुमने उनके लिए महर मुकर्रर किया हो, फ़निस्फ़ मा फ़रज़तुम, तो जो मुकर्रर है उसका निसफ देना पड़ेगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं देखा आयत से मालूम हुआ कि सोहबत से पहले निसफ ही देना पड़ेगा, यहां कोई खलवत सहीहा का जिक्र नहीं है। तो हम उसका जवाब देते हैं कि यह आयत आम मखसूसुल बाज है, आयत क्या है, आम मखसूसुल बाज है, और आम मखसूसुल बाज जन्नी हो जाता है, वहां कियास के जरिए और तख्सीस की जा सकती है या वहां पर उसके साथ कियास को पेश किया जा सकता है। तो लिहाजा जब यह आयत जन्नी है तो इसके मुकाबले में कियास पेश किया जा सकता है। और नीज खलवत सहीहा के अंदर अगरचे हकीकतन वती तो न हुई लेकिन दलालतन वती हो गई, जब क्योंकि खलवत सहीहा जो है यह वती तक पहुंचाने वाली है, वती की तरफ ले जाने वाली है, जब खलवत सहीहा होगी तो यह हमें कहां तक पहुंचा देगी, वती तक पहुंचा देगी। तो यह खलवत सहीहा दाय वती हुई, तो यहां दाय वती का भी वही हुक्म है जो वती का हुक्म है। और नीज वजह यह कि यहां खलवत सहीहा हुई और फिर खावन ने तलाक दे दी, खावन भी कहता है सोहबत मैंने नहीं की और बीवी भी कहती है कि इस खावन ने मेरे साथ सोहबत नहीं की, तो हो सकता है सोहबत हो चुकी हो लेकिन दोनों ने आपस में किसी मकसद की वजह से इत्तेफाक कर लिया, औरत अपने आप को कंवारी जाहिर करना चाहती है, लिहाजा जब खलवत सहीहा पाई गई आप ये पता नहीं चल सकता कि सोहबत हुई थी या सोहबत नहीं हुई। और जब किसी हुक्म की इल्लत का पता ना चले तो सबब पर हुक्म लगा दिया जाता है, तो यहां जब सोहबत का पता नहीं चल सकता तो सोहबत का जो सबब है यानी खलवत सहीहा उसी पर हुक्म का मदार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं वह इन काना अहदुहुमा मरीजन औ साइमन फी रमजान औ मुहरिमन बिहज्जिन फर्ज़िन औ नफलिन औ बिउम्रतिन औ कानत हाइज़न फलैसतिल खलवतु सहीहतन।
भाई अब वो मवानिअ जिक्र करने लगे हैं, क्या क्या चीजें मानिअ बन सकती हैं, खलवत तो पाई जा रही है लेकिन कोई मानिअ मौजूद है, मसलन दोनों ने या दोनों में से किसी ने रमजान का रोजा रखा हुआ है, या दोनों में से कोई एक हालत एहराम के अंदर है, या औरत हैज की हालत में है, या दोनों में से कोई एक शदीद बीमार है, तो ये सब मानिअ हैं। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन कान अहदुहुमा मरीजन, अगर उन दोनों में से कोई एक मरीज हुआ, औ साइमन फी रमजाना, या रोजादार हुआ रमजान में यानी उसने रमजान का रोजा रखा हुआ है, औ मुहरिमन बिहज्जिन फर्ज़िन औ नफलिन, या वो एहराम की हालत में है फर्ज हज या नफल हज की वजह से,
او بے عمر تین, یا وہ احرام کی حالت میں ہے عمرے کی وجہ سے, او کانت حائزن, یا وہ عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے. حائزن کہا, حائزتن نہیں کہا, یاد رکھو بھائی. یہ زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا اور زاربتن کا معنی پٹائی کرنے والی, تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے گول تا کے ساتھ, لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو وہاں پھر گول تا کی بھی حاجت نہیں. جیسے حائزہ یہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے, لہذا یہاں گول تا کی بھی حاجت نہیں. یا اسی طرح حاملن, حاملہ صرف عورت ہوتی ہے تو وہاں حاملن کے ساتھ گولتا ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی. اوکانت حائزن, یا وہ عورت حیض والی ہے, فلیست الخلوت صحیحتن, تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے. حتی لو طلقها کان لها نصف المہر, یہاں تک کہ اگر خاوند نے اس خلوت کے بعد اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے نصف مہر ہوگا, کیونکہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے. ان موانع میں سے کوئی مانع پایا گیا, لأن هذه الأشياء موانع, اس لیے کیونکہ یہ چیزیں مانع ہیں یعنی صحبت سے. اما المرض, اب دیکھو ان میں سے ایک ایک کی تفصیل صاحب ہدایہ بیان کریں گے کہ یہ کس طرح مانع ہیں بھائی. کہتے ہیں اما المرض, مرض جو ہے, فل مراد منہ, تو اس سے مراد جو ہے ما یمنع الجماع, ایسا مرض ہے جو جماع کے لیے مانع ہو کہ اس کی وجہ سے صحبت نہ ہو سکے. او یلحقہ بہ ضرر, یا اس مریض کو جماع کی وجہ سے نقصان ہوتا ہو. یاد رکھو خاوند یا بیوی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور مانع تو نہیں ہے, لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے, لیکن ہر بیماری نہیں معتبر, ایسی بیماری جو صحبت کے لیے مانع بنے, یا ایسی بیماری ہے کہ اگر اس میں صحبت کی جائے تو اس سے مریض کو نقصان ہوگا, تو اس قسم کا مرض جو ہے وہ مانع ہے, لہذا یہ خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی بلکہ خلوت فاسدہ کہلائے گی, اور اس کی صورت میں پھر پورا مہر نہیں آئے گا خاوند پر, نصف مہر ہی آئے گا. تو کہتے ہیں اما المرض فالمراد منہ ما یمنع الجماع او یلحقہ بہ ضرر, کہ مرض جو ہے اس سے مراد ایسا مرض ہے جو صحبت سے مانع ہو یا صحبت کی وجہ سے اس مریض کو نقصان ہوتا ہو. وقیل, اور کہا گیا ہے, مرضہ لا یعرا عن تکسر و فتور, مرضہ کہ مرد کا مرض جو ہے, لا یعرا وہ خالی نہیں ہوتا, عن تکسر, تکسر کا معنی ہے ٹوٹنا, یعنی بدن ٹوٹ رہا ہو, بدن تکلیف میں ہے بیماری کی وجہ سے. وہ فتور, فتور کا معنی ہے سستی, یعنی آدمی نڈھال ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, اس پر کمزوری طاری ہوتی ہے. تو یہ بعض فقہا کی بات کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی, اوپر تو آ گیا کوئی ایسا مرض ہو جو جماع سے مانع بنے یا اس کی وجہ سے مریض کو نقصان ہوتا ہو, چاہے وہ مرض مرد میں ہو چاہے وہ مرض عورت میں ہو, دونوں کا حکم بیان کر دیا صاحب ہدایہ نے. لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو مرض کی تفصیل ہے یہ عورت کے اندر ہے, کس میں ہے, عورت میں ہے, مرد کے اندر تو اگر تھوڑا بہت مرض بھی ہو تو بھی وہ مانع ہے, اس لیے کیونکہ اگر تھوڑا بہت بیمار بھی ہوگا تو مرد جو ہے اس کا جسم بیماری کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہوگا اور وہ نڈھال ہوگا تو اس کی طبیعت صحبت پر آمادہ ہی نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا یہ جو مرض ذکر ہوا ہے یہ عورت کا ذکر ہے کہ وہ اتنا زیادہ مرض ہو تو وہ مانع بنے گا اور مرد کا تھوڑا مرض بھی مانع بنے گا. تو کہتے ہیں وقیل مرضہ لا یعرا عن تکسر و فتور, کہ مرد کا جو مرض ہے وہ خالی نہیں ہے بدن کے ٹوٹنے سے اور بدن کے نڈھال ہونے سے. وہذا تفصیل فی مرضہا, اور یہ جو تفصیل ذکر کی گئی تو یہ تو عورت کے مرض میں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مرض ہو کہ صحبت ہی نہ ہو سکے یا اس کو نقصان ہوتا ہو تو پھر وہ مانع ہے, اور مرد کا تھوڑا بھی مرض ہو تو وہ مانع ہے, یہ بعض فقہا فرماتے ہیں. آگے دیکھیے, کہتے ہیں وَأَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ, اوپر متن میں آیا تھا رمضان کا روزہ بھی مانع ہے. اب وہ کیوں مانع ہے تو صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں, اس لیے کیونکہ رمضان کا روزہ اگر توڑے گا تو پھر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی کرنا پڑے گی, یعنی ایک روزہ توڑا ہے اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارے کے طور پر 60 مسلسل روزے بھی رکھنا پڑیں گے, تو گویا 61 روزے اس شخص پر لازم لازم ہو جائیں گے اور 61 روزے رکھنے کی کون طاقت رکھتا ہے. تو لہذا اس لیے جب رمضان کا روزہ ہو تو یہ مانع بنے گا, اس قضاء اور کفارے کے خوف سے پھر یہ روزہ نہیں توڑیں گے. تو کہتے ہیں وہ اما صوم رمضان, اور باقی رمضان کا جو روزہ ہے, لما یلزمہ من القضاء والکفارتی, تو اس وجہ سے جو اس کی وجہ سے قضاء اور کفارہ لازم آتا ہے, والاحرام, اور احرام جو ہے وہ بھی مانع ہے, لما یلزمہ من الدم وفساد النسک والقضاء, اس وجہ سے جو اس کی وجہ سے لازم آتا ہے, من الدم یعنی کہ قربانی, دم بھائی دم سے مراد ہے قربانی. یاد رکھو احرام کی حالت میں انسان پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں, وہ خوشبو نہیں لگا سکتا, وہ اپنے ناخن یا بال نہیں کاٹ سکتا, مرد جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا, اور اسی طرح بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا. تو یہ سب کیا ہیں, احرام کے اندر انسان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. اور یاد رکھو عمرہ جو ہے صرف طواف اور سعی کا نام ہے, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جائیں تو یہ ایک طواف ہے بھائی, یہ ایک طواف ہے. اور پھر بیت اللہ کے پاس ہی صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, ان کے درمیان 7 چکر لگا لیے جائیں تو یہ سعی کہلاتی ہے. تو عمرہ صرف اس طواف پر اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے, جبکہ حج کے اندر اور بھی افعال کرنے پڑتے ہیں, مینا جانا پڑتا ہے, پھر عرفات جانا پڑتا ہے, پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزارنا پڑتی ہے, پھر مینا کے اندر آنا پڑتا ہے, اور پھر وہاں شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں, اور اسی طرح طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے, وہ طواف جو حج میں فرض ہے. تو دیکھو احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت منع ہے. اب عمرے کے اندر اگر کوئی شخص عمرے کے اندر طواف کے 4 چکروں سے پہلے اگر بیوی سے اس نے صحبت کر لی تو اس کا عمرہ ہی فاسد ہو گیا, اس کا عمرہ فاسد ہو گیا, اب اس کو اس عمرے کی قضا کرنا پڑے گی, اور نیز ایک دم بھی اس پر لازم آیا, اس کو اب ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. دم کا کیا معنی؟ قربانی, قربانی. اور اگر عمرے میں 4 چکر طواف کے وہ لگا چکا تھا, اس کے بعد اس نے بیوی سے صحبت کی ہے, تو پھر اس صورت میں عمرہ تو فاسد نہیں ہوا, اسی عمرے کو پورا کر لے, البتہ ایک جانور کی قربانی اس کو کرنا پڑے گی. جی. اگر 4 طوافوں سے پہلے صحبت کی تو عمرے کی بھی قضا کرنا پڑے گی اور جانور کی قربانی بھی کرنا پڑے گی, اور اگر 4 چکروں کے بعد صحبت کی ہے تو پھر عمرے کی تو قضا نہیں کرنا پڑے گی, اسی عمرے کو پورا کر لے, اب عمرہ فاسد نہیں, کیونکہ اکثر چکر طواف کے وہ لگا چکا ہے, البتہ جانور کی قربانی اس پر لازم ہے جرمانے کے طور پر. اور اسی طرح حج کے اندر یاد رکھو, حج کے اندر بھی جب احرام باندھ لیا تو احرام کی پابندیاں آ گئیں, اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا. اب حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے, 9ویں ذوالحجہ کو عرفات جانا ہے. اگر وقوف عرفہ سے پہلے کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی حج کے احرام کے اندر, تو یاد رکھو اس کا حج ہی فاسد ہو گیا, اس کا حج ہی فاسد ہو گیا, اس نے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے, تو اب ایک جانور کی قربانی اس کو کرنا پڑے گی. ایک جانور کی قربانی کرے, حج اس کا فاسد ہو چکا ہے. لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حج فاسد ہوا ہے تو حج کے افعال ہی چھوڑ دے, نہیں نہیں, حج کے افعال سارے کرنا پڑیں گے اس کو, البتہ اگلے سال پھر اس کو اس حج کی قضا کرنا پڑے گی کیونکہ حج فاسد ہو چکا تھا. لیکن اگر اس حج کے احرام میں وقوف عرفہ کر لیا تو حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو گیا, اب حج فاسد نہیں ہو سکتا, سب سے بڑا رکن ادا ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر کسی شخص نے ابھی اسی احرام کے اندر تھا کہ اس نے بیوی سے صحبت کر لی, تو پھر اس صورت میں یاد رکھو حج تو فاسد نہیں, حج کے افعال تو یہ کرتا چلا جائے, حج کو پورا کرے, لیکن اس صورت میں اس نے جرم بہت بڑا کیا ہے تو اب اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہو گئی. پہلے تو تھا کسی بھیڑ بکری کی قربانی کر لے وہ کافی تھی, لیکن اب اس کو اونٹ کی قربانی کرنا پڑے گی. تو لہذا معلوم ہوا حج یا عمرے کا احرام یہ بھی مانع بنے گا صحبت سے, کیونکہ اس صورت میں کم از کم قربانی تو ضرور کرنا پڑے گی بھائی, کم از کم قربانی تو ضرور آئے گی, قربانی کا جرمانہ تو ضرور آئے گا. تو لہذا یہ حج یا عمرے کا احرام بھی مانع بنے گا. اس کے ہوتے ہوئے خلوت پائی گئی تو یہ خلوت صحیحہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہے بھائی. तो कहते हैं वल एहराम, और बाकी एहराम जो है लिमा यलजमुहु, तो उस वजह से जो इस वती की वजह से उस पर लाजिम आएगी वो क्या है, मीन के साथ बयान है, मीनत दम यानी कि कुर्बानी, व फसादिन नुसुक वल कजाई, नुसुक कहते हैं इबादत को और इबादत का फासिद होना, वल कजाई और कजा का आना। देखो बाद सूरतों में उमरा ही फासिद हो जाता है उसकी कजा करना पड़ती है, बाद सूरतों में हज ही फासिद हो जाता है उसकी कजा करना पड़ती है, तो इन चीजों की वजह से ये एहराम भी मान्या बनेगा। वल हैज मान्यउन तबअन व शरअन, और हैज भी मान्या है तबअन भी और शरअन भी, हैज भी मान्या है औरत को अगर हैज आ रहा है, अब अगरचे बेशक खलवत पाई गई लेकिन ये खलवत सहीहा नहीं क्योंकि मान्या मौजूद है, और याद रखो हैज तबअन भी मान्या है और शरअन भी माने है। तबअन इस तरह माने है कि औरत से खून जारी है, खावंद की तबीयत ही गवारा नहीं करेगी कि औरत से हैज का खून जारी है और वो उसके साथ सोहबत कर ले, तो हैज क्या है तबअन भी माने है, इंसान की तबीयत ही इस हालत में सोहबत पर आमादा नहीं होगी, और नीचे शरअन भी माने है क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला तकरबू हुन्न हत्ता यतहुरना, कि इन बीवियों से सोहबत न करो यहां तक कि ये पाक हो जाए। देखो शरीयत ने भी मना किया है और तबीयत भी इस हालत में सोहबत पर आमादा नहीं होती, तो हैज तबअन भी मान्या है और शरअन भी। बात समझ में आ गई। याद रखो ये जितने मवानेह ऊपर जिक्र हुए इनमें से बाज हिस्सी मवानेह हैं, बाज शरई मवानेह हैं, और बाज जो हैं वो तबई मवानेह हैं। हिस्सी मानेह की मिसाल है मरज। हिस्सी माने होने का मतलब यह है कि जाहिरी तौर पर वो मान्या नजर आ रहा हो, जाहिरी तौर पर वो मान्या महसूस हो रहा हो, मसलन दोनों में से कोई शदीद बीमार है तो हिस्सी तौर पर नजर आ रहा है कि इस मरज के अंदर तो ये सोहबत नहीं कर सकते। या दूसरी सूरत ले लें, कमरे के अंदर एक और शख्स भी मौजूद है तो यह भी हिस्सी मान्या है, जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है कि जब कोई और शख्स मौजूद है तो इसकी मौजूदगी में तो सोहबत नहीं कर सकते ये, तो यह हिस्सी मान्या है। और बाज़ औक़ात मान्या शरई होता है जैसे रमजान का रोजा और एहराम। अब ये रमजान का रोजा ये शरई मान्या की मिसाल है क्योंकि इस सूरत में कफारा लाजिम आएगा, तो कफारे के खौफ की वजह से इस रोजे को नहीं तोड़ेंगे और सोहबत नहीं करेंगे। और इसी तरह एहराम जो है ये भी शरई मान्या है, एहराम में तो सोहबत मना है, अगर इस हालत में ये सोहबत करेंगे तो कम अज कम एक जानवर की कुर्बानी इन पर जरूर लाजिम आएगी, और बाद सूरतों के अंदर तो इनका हज या उमरा भी फासिद हो सकता है तो उसकी भी इनको कजा करना पड़ेगी। तो अब इस कुर्बानी वाजिब होने के फिक्र और खौफ की वजह से या इबादत के फासिद होने के खौफ से ये एहराम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और सोहबत नहीं करेंगे, तो इस तरह एहराम मान्या बन जाएगा, तो ये शरई मान्या है। और बाद औकात मान्या तबई होता है यानी तबीयत ही आमादा नहीं होती उस हालत में सोहबत करने पर, जैसे कि हैज है, हैज की हालत में तो औरत से खून जारी है, इस हालत में खावंद की तबीयत ही गवारा नहीं करेगी कि वह सोहबत कर ले, तो यह हैज तबई माने भी है और शरई माने भी है, शरीयत ने भी मना किया है वला तकरबू हुन्ना हत्ता यतहुरना, कि इन बीवियों से सोहबत न करो यहां तक कि ये पाक हो जाएं हैज से। बात समझ में आ रही है। तो मवानिया कितनी किस्म के हो सकते हैं, हिस्सी भी हो सकते हैं यानी जो आंखों से नजर आए जो महसूस हो, और शरई मान्या भी हो सकता है और तबई मान्या भी हो सकता है। भाई तो कहते हैं वल हैज मान्यउन तबअन व शरअन, और हैज जो है वो तबअन भी मान्या है और शरअन भी मान्या है। आगे देखिए भाई, व इन काना अहदुहुमा साइमन ततवअन फलहुल महरु कुल्लुह। भाई ऊपर कुछ मवानिया जिक्र कर दिए, अगर वो मौजूद हैं तो उस सूरत में वो खलवत सहीह नहीं है बल्कि फासिद है, और उन्हीं में एक रमजान का रोजा था। अगर किसी शख्स ने रमजान का रोजा नहीं रखा, नफली रोजा रखा हुआ है, तो कहते हैं नफली रोजा सोहबत से मान्या नहीं है, क्योंकि नफली रोजा तो तोड़ा भी जा सकता है, उसमें तो सिर्फ कजा आती है, कफारा नहीं आता। बात समझ में आ गई। लिहाजा नफली रोजा अगर है मियां बीवी में से किसी एक का और वो एक कमरे में इकट्ठे हैं, तो ये खलवत सहीहा ही कहलाएगी, और इस सूरत में जब खलवत सही है तो खावन को पूरा महर देना पड़ेगा। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह इनकान अहदुहुमा साइमन ततव्वुअन, और अगर इन दोनों में से कोई रोजादार है, ततव्वुअन नफली यानी नफली रोजा उसने रखा हुआ है, फलहल महरु कुल्लुहु, तो उस औरत के लिए पूरा महर होगा, लिअन्नहु युबाहु लहुल इफ्तारु मिन गैर उज़्रिन फी रिवायतिल मुंतका वहादल कौलु फिल महर हुवा सहीह। याद रखो ये जो नफली रोजा है इसके बारे में फुकहा की दो रिवायतें हैं। एक रिवायत जो है मुंतका किताब के अंदर है हाकिम शहीद की। हाकिम शहीद बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं अहनाफ के। वो मुंतका किताब के अंदर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने नफली रोजा रखा हुआ है तो बगैर किसी उजर के भी वो इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। हां अलबत्ता बाद में इसकी कजा करना पड़ेगी, इसलिए क्योंकि नफल जो है वो जब तक शुरू ना किए जाए वो नफल हैं, लेकिन जब शुरू कर दिए अब वो वाजिब हो गए, अब उसको पूरा करना जरूरी है। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तुबतिलु आमालकुम, तुम अपने अमलों को बातिल न करो। तो जब आपने एक अमल शुरू कर दिया है तो अब वो आप पर लाजिम हो गया। इसी तरह नफली नमाज है, आपकी मर्जी है नफल पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन जब आपने नफल शुरू कर दिए अब आप पर वो लाजिम हो गए। अगर आपको किसी वजह से तोड़ने पड़े तो फिर आपको बाद में इसकी कजा करना पड़ेगी। तो मुंतका किताब की रिवायत के मुताबिक अगर किसी ने नफली रोजा रखा हुआ है तो बगैर उजर के तोड़ना भी उसके लिए जायज है, अलबत्ता बाद में कजा करना पड़ेगी। जबकि दूसरी रिवायत इस बारे में यह है कि नफली रोजा भी बगैर उजर के तोड़ना जायज नहीं है। कोई उजर हो फिर तो तोड़ सकता है, बगैर उजर के तोड़ना जायज नहीं। साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि महर के सिलसिले में यानी महर कामिल के वजूब के सिलसिले में फुकहा ने मुंतका की रिवायत को तरजीह दी है। मुंतका की क्या रिवायत है? बगैर उजर के भी नफली रोजा तोड़ना जायज है। तो यहां पर भी अगरचे दोनों में से किसी एक ने नफली रोजा रखा हुआ है लेकिन नफली रोजा तो तोड़ना बगैर उजर के भी जायज है, लिहाजा यह मान्या नहीं। जब मान्या नहीं तो महर पूरा आएगा। जबकि वैसे रोजा तोड़ने के सिलसिले में फुकहा ने दूसरी रिवायत को तरजीह दी है, लेकिन महर के सिलसिले में मुंतका की रिवायत को तरजीह दी है। कहते हैं लिअन्नहु युबाहु लहुल इफ्तारु मिन गैर उज़्रिन, इसलिए क्योंकि नफली रोजा रखने वाले के लिए मुबाह है कि वो रोजा तोड़ सकता है बगैर किसी उजर के। फी रिवायतिल मुंतका, मुंतका की रिवायत के मुताबिक वहाद अल कौलु फिल महर हुवा सहीह, और महर के सिलसिले में यही वाला कौल सहीह है यानी महर कामिल के वाजिब होने के सिलसिले में। वसौमुल कजा इवल मंजूरी का ततव्वु फी रिवायतिन, नजर जाल के साथ नजर मन्नत को कहते हैं, तो मंजूर जो है यानी वो मन्नत वाला जो रोजा है। अच्छा भाई कजा रोजा, रमजान का रोजा किसी का छूट गया था और वो उसकी क्या करना चाहता है कजा, या किसी ने नफली रोजा तोड़ दिया था अब उसकी क्या करना चाहता है कजा, या इसी तरह कोई शख्स मन्नत मान लेता है कि अल्लाह मैं आपके लिए 10 रोजे रखूंगा तो ये 10 रोजे उस पर वाजिब हो गए, या इसी तरह कहता है अल्लाह अगर मेरा फुलां काम हो गया तो मैं 10 रोजे रखूंगा, तो ये मन्नत के रोजे भी इंसान पर वाजिब हैं। तो ये वाजिब रोजे तोड़ने का क्या हुक्म है, क्या ये भी मान्या बनेगा या नहीं, क्या इसके साथ खलवत हुई तो ये खलवत सहीहा कहलाएगी या खलवत फासिदा। तो आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि इस सिलसिले में एक रिवायत तो ये है कि ये जो कजा और मन्नत के रोजे हैं ये भी नफली रोजों की तरह हैं, और नफली रोजा तो वती से मान्या नहीं, लिहाजा ये कजा और मन्नत वाला रोजा भी वती से मान्या नहीं बनेगा। ये एक रिवायत है, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि ये कजा या मन्नत का रोजा भी मान्या बनेगा। कजा या मन्नत का रोजा ये जो वाजिब रोजा है ये भी मान्या बनेगा। तो दोनों तरफ फुकहा गए हैं। बास फुकहा ने इस बात की तरफ नजर की कि ये कजा रोजा या मन्नत का रोजा तो वाजिब है, जब ये इसको तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, तो उन्होंने गुनाह की तरफ नजर की तो इसको मान्या करार दिया। क्या करार दिया? मान्या करार दिया कि ये रोजा मान्या बनेगा गुनाह की वजह से, वो इसको तोड़ेगा ही नहीं, चाहे औरत ने रखा है या मर्द ने रखा हुआ है। और जबकि बाज़ फुकहा ने इस तरफ नजर की कि इनके तोड़ने की वजह से कफारा तो नहीं आएगा, दोबारा रोजा रखना पड़ेगा लेकिन कफारा तो नहीं आएगा, जब कफारा नहीं आएगा तो ये नफली रोजे की तरह हुए, जब नफली रोजे की तरह हुए तो वो तो मान्या नहीं बनता था सोहबत से, तो ये भी सोहबत से मान्या नहीं है भाई। तो कहते हैं वसौमुल कजा इवल मंजूरी का ततवुई फी रिवायतिन, और कजा का रोजा वल मंजूरी और इसी तरह मन्नत का जो रोजा है का ततवुई, वो नफली रोजे की तरह है फी रिवायतिन एक रिवायत के मुताबिक, यानी मान्या नहीं। लिअन्नहु ला कफारत फीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कफारा नहीं आता, और एक रिवायत में क्या है कि ये मान्या है भाई। वह सलातु भी मंजिलत सौमी, और नमाज जो है वो रोजे के दर्जे में है, नमाज रोजे की तर्ह है फर्जुहा का फर्ज ही, नमाज के जो फर्ज हैं का फर्ज ही वो फर्ज रोजे की तरह है। वह नफलुहा का नफली ही, और नमाज के जो नफल हैं का नफली ही वो रोजे के नफल की तरह है। यानी फर्ज रोजा यानी रमजान का रोजा मान्या बन रहा था वती से, तो फर्ज नमाज भी क्या है मान्या बनेगी। मसलन खावन बीवी के साथ एक अलग कमरे में इकट्ठा तो हुआ लेकिन इस दौरान बीवी फर्ज नमाज पढ़ रही थी, या बीवी आई और खावन क्या था फर्ज नमाज पढ़ रहा था, तो कुछ देर तो खलवत हुई, मसलन उन नमाज जरा लंबी कर दी, 5-10 मिनट तक नमाज लंबी कर दी, तो ये अब खलवत तो हुई लेकिन फर्ज नमाज है, तो ये किसकी तरह है फर्ज रोजे की तरह, और फर्ज रोजा तो मान्या बनता था वती से, तो ये नमाज भी क्या है वती से मान्या, लिहाजा इस खलवत को खलवत सहीहा नहीं कहेंगे। और अगर नफल नमाज थी तो फिर इसका नफल रोजे वाला हुक्म है, और नफल रोजा तो वती से मान्या नहीं, तो लिहाजा ये नमाज भी वती से मान्या नहीं, लिहाजा ये खलवत सहीहा कहलाएगी, और इस सूरत में खावंद को पूरा महर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये माना है वस्सलातु बिमंजिलति सौमी, और नमाज जो है वो रोजे के दर्जे में है, फर्जुहा का फर्ज ही व नफलुहा का नफली ही, नमाज के फर्ज रोजे के फर्ज की तरह है और नमाज का नफल जो है वो रोजे के नफल की तरह है। व इदा खलल मजबूब बिमराती ही सुम्मा तल्लकहा फलहा कमालुल महर। मजबूब भाई, याद रखो मजबूब वो शख्स है जिसका आलय तनासुल कट गया हो, उसको क्या कहते हैं मजबूब भाई। अब सूरत मसला ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है लेकिन ये शख्स मजबूब है, इसने औरत के साथ अब खलवत कर ली एक कमरे के अंदर, तो अब ये शख्स तो वती पर कादिर ही नहीं है, इसका तो आलय तनासुल ही कटा हुआ है, तो क्या अब इस खलवत की वजह से इस शख्स पर पूरा महर आएगा या पूरा महर नहीं? तो कहते हैं भाई मजबूब भी जब खलवत सहीहा कर लेगा तो उसको भी पूरा महर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये तो मरीज से भी ज्यादा आजिज है, मरीज तो फिर भी किसी वक्त ठीक हो जाएगा, इसके तो ठीक होने की कोई सूरत नहीं, और मरीज के अंदर महर पूरा नहीं आता तो मजबूब की खलवत की सूरत में भी महर पूरा नहीं आएगा। कहते हैं वह इदा खलल मजबूब बिमराती ही, और अगर मजबूब ने खलवत कर ली अपनी बीवी से, सुम्मा तल्लकहा फिर इसको तलाक दे दी, फलाहा कमालुल महर इंद अबी हनीफा रहिमहुल्ला, तो उस औरत के लिए पूरा महर होगा इमाम साहिब के नजदीक। वकाला अलैहि निस्फुल महरी, और साहिबैन फरमाते हैं कि इस मजबूब पर निस्फ महर होगा, लिअन्नहु अअजज़ु अनिल मरीज़ी, इसलिए क्योंकि यह तो मरीज से भी ज्यादा आजिज है और मरीज पर पूरा महर नहीं आता तो इस पर भी पूरा महर नहीं आएगा। बिखिलाफिल इन्नीन, बखिलाफ इन्नीन के, इन्नीन कहते हैं याद रखो वो शख्स जो औरत से सोहबत पर कादिर नहीं, यानी जिसके औज में सख्ती नहीं, वो सोहबत कर ही नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं इन्नीन कहते हैं। कहते हैं बिखिलाफिल इन्नीन, बखिलाफ इन्नीन के, यानी अगर इन्नीन ना मर्द जो है जब इसने खलवत की है बीवी के साथ तो उसको पूरा महर ही देना पड़ेगा, भाई ये तो आइनीन है, फिर कैसे पूरा महर देना पड़ेगा। कहते हैं भाई यहां हुक्म का मदार आलय तनासुल की सलामती पर है, और ये अगरचे ना मर्द है लेकिन आलय तनासुल तो सलामत है, लिहाजा अब जब इसने खलवत की है बीवी के साथ तो पूरा महर ही देना पड़ेगा। कहते हैं बिखिलाफ इन्नीन, बखिलाफ इन्नीन के लि अन अल हुक्म उदीर अला सलामति आलती, इसलिए क्योंकि हुक्म का मदार जो है आलय तनासुल की सलामती पर होगा, और आलय तनासुल तो सलामत है लिहाजा पूरा महर देना पड़ेगा। वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, भाई देखिए इन्नीन के मसले में तो हमारे आइमा क्या फरमाते हैं, इन्नीन ने अगर खलवत कर ली तो पूरा महर देना पड़ेगा, लेकिन मजबूब के सिलसिले में साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ था। साहिबैन फरमाते हैं ये मजबूब ये तो मरीज से भी ज्यादा आजिज है, लिहाजा इस पर पूरा महर नहीं आएगा, जैसे मरीज पर पूरा महर नहीं आता। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, मजबूब ने भी जब अपनी बीवी के साथ खलवत कर ली तो पूरा महर देना पड़ेगा। वजह यह कि औरत ने तो अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है, जो मान्या और रुकावट आया वो उस मजबूब की तरफ से आया है कि वो सहबत पर कादिर नहीं है। बीवी के तो बस में जितना था कि उसने अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दिया है, लिहाजा औरत को पूरा हक देना पड़ेगा, यानी पूरा महर उसको देना पड़ेगा। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है मजबूब के बारे में कि अन्नल मुस्तहक अलैहा, मुस्तहक भाई इसको इसमें मफूल पढ़ना भाई, हा पर जबर पड़े, अन्नल मुस्तहक अलैहा कि औरत पर इस बात का इस्तेहकाक है, यानी औरत के जिम्मे ये हक है, तो मुस्तहक अलैहा का तर्जमा कर ले औरत के जिम्मे हक, औरत के जिम्मे हक। कहते हैं इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुस्तहक अलैहा कि औरत के जिम्मे खावंद का यह हक है, अत तस्लीम कि वह अपने आप को सुपुर्द कर दे, फी हक सहकी, याद रखो सहक का माना शारहीन ने रगड़ने और मलने के किए हैं, किसी चीज को रगड़ना या मलना, तो माना यह है। इमाम साहब फरमाते हैं कि मजबूब के सिलसिले में औरत के जिम्मे यह था कि अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दे, और खावंद जो है वो उसका तो आलय तनासुल कटा हुआ है, वो सोहबत तो कर नहीं सकता, वो दुखूल तो कर नहीं सकता, अलबत्ता ऊपर ही ऊपर रगड़कर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, मनी का इखराज कर देगा, तो लिहाजा औरत के जिम्मे तो इतना था और उसने इस पर अमल कर दिया, उसने अपने आप को खलवत के अंदर खावंद के सामने पेश कर दिया, तो जब औरत ने अपने ऊपर जो हक था वो अदा कर दिया है तो अब खावंद पर जो उसका हक है यानी महर वो भी अब खावंद को पूरा देना पड़ेगा। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुस्तहक अलैहा कि औरत के जिम्मे खावंद का यह हक है, अत तस्लीम कि वो सुपुर्द करे अपने आप को, फी हक सहकी रगड़ने के हक में कि मजबूब जो है वो रगड़ कर ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, तो औरत के जिम्मे अपने आप को सुपुर्द करना है इस सिलसिले में। वकद अतत बिही, और तहकीक इसको औरत ले आई, यानी इसको तो औरत ने पूरा कर दिया, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है, लिहाजा अब खावन को पूरा महर देना पड़ेगा। तो यहां पर आया भाई फी हक सहकी, हिदाया के अक्सर नुस्खों में यहां सहक ही है, लेकिन हिदाया के बाज नुस्खों के अंदर यहां मुस्तहिक का लफ्ज है, जैसे बिनाया जो हिदाया की अजीम शराह है भाई, उसके अंदर जो हिदाया की इबारत वो जिक्र फरमाते हैं तो वो फी हक सहक के बजाय फी हक इल मुस्तहिक जिक्र फरमाते हैं, और इस सूरत में इबारत बड़ी प्यारी बन जाती है भाई। साहिब हिदाया की फसीह बलीग इबारतें चल रही हैं, तो पीछे मुस्तहक इसमें मफूल का जिक्र था तो आगे मुस्तहिक यानी इसमें फाइल का जिक्र आ गया, तो इबारत गोया यूं बन गई कि अन्नल मुस्तहक अलैहा तस्लीम फी हक्किल मुस्तहिक, तो सहक की जगह क्या रख दें, अल मुस्तहिक। अब इबारत का तर्जमा समझ लो, अन्नल मुस्तहक अलैहा, मुस्तहक अलैहा का क्या तर्जमा मैंने बतलाया, औरत के जिम्मे हक है यानी खावंद का, औरत के जिम्मे हक है खावंद का, अत तस्लीम अपने आप को सुपुर्द करना, फी हक्किल मुस्तहिक, मुस्तहिक कौन है, खावंद है, देखो जब निकाह हो गया तो सोहबत का हकदार खावंद है, वो हुआ मुस्तहिक। तो फी हक्किल मुस्तहिकी, इसका तर्जमा कर लें खावंद के हक में, खावंद के बारे में, खावंद के बारे में, खावंद के सिलसिले में। देखो फिर तर्जमा बेहतरीन होगा। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुस्तहक अलैहा, कि औरत के जिम्मे यह हक है, अत तस्लीमु, कि वह अपने आप को सुपुर्द करे, फी हकिल मुस्तहक की, खावंद के सिलसिले में, खावंद के हक में औरत पर यह हक है कि वह अपने आप को सुपुर्द करे। उसके बात समझ में आ गई। वकद अतत भी ही, और तहकीक इसको तो औरत ले आई, उसने तो यह हक अदा कर दिया, इसको पूरा कर दिया, तो अब खावंद पर भी लाजिम है कि उस पूरा महर उसके हवाले करे। दलील समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।